ओम शांति। मनोरमा बहन ने हमारी लंबी चौड़ी परिचय की बातें बताई, बायो डेटा बताया। मैं हमेशा ही बहनों को कहता हूँ, शॉर्ट में बता सकते हैं, रमेश भाई एक आत्मा है, परमात्मा की संतान है, यही हमारा सच्चा परिचय है। बाकी सब तो परिचय रहने वाला नहीं है, इमॉर्टल। बाकी सब परिचय मॉर्टल है, यही इमॉर्टल है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। आज मुझे ये ड्यूटी मिली है कि यज्ञ के इतिहास के साथ साथ दादी प्रकाशमणि के जीवन के बारे में थोड़ी बातें बताऊं। मैं नहीं समझता हूं मैं इतना इसके लिए योग्य व्यक्ति हूं, हमारी दादियां हैं, हमारे और भी कई हैं जो इसके बारे में बता सकते हैं। मैं तो थोड़ा जो मेरा मुझे जो ज्ञान मिला हुआ है, चाहे दादा नारायण के द्वारा, दादी प्रकाशमणि के द्वारा, या दादी ब्रिजेंद्रा के द्वारा, आदि आदि के द्वारा, उसमें से थोड़ी बातें बता सकूंगा, क्योंकि इतना पुराना इतिहास, 75 ईयर्स का इतिहास, को सागर को गागर में समाना या सिंधु को बिंदु में समाना, वो बहुत कठिन बात है। आप सब जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा कराची हैदराबाद में रहते थे, हैदराबाद से कराची गए, कराची से कलकत्ता गए थे, कलकत्ता से उनको वैराग्य आना शुरू हुआ और उसके कारण 2 महीने के लिए, करीब 2 महीना बनारस में जाकर के रहे अपने मित्र के पास। आप सबको बता दूं कि बनारस में जो मकान में रहे थे, उस मकान को यज्ञ को सौगात में मिल जाए, इसके लिए हमारे कैतान भाई हैं, वो प्रयत्न कर रहे हैं। फिर अगर वो मिल जाएगा तो हम सबके लिए वो भी एक तीर्थ स्थान बन जाएगा, जहाँ ब्रह्मा बाबा 2 मास रहे थे। फिर वहाँ से ही बाबा हैदराबाद सिंध आए। बाबा ने हैदराबाद सिंध में एक मकान खरीद किया था, उसका नाम था जसोदा भवन। जसोदा भवन के अंदर ग्राउंड फ्लोर पर मकान रहने का भी था, ऊपर में फर्स्ट फ्लोर में 3 कमरे थे, 10x10 के 3 कमरे थे। तो बाबा ने वहाँ पर सत्संग शुरू किया 10x10 के 1 कमरे में। फिर आने वाले की संख्या बढ़ गई तो एक दीवार तोड़ करके 20x10 का कमरा बन गया। फिर एक दीवार तोड़ करके किया तो 30x10 का फर्स्ट फ्लोर बन गया, पूरा ही आने वाले क्लासेस के अंदर आने वाले बहन भाइयों के लिए। और उसके कारण ब्रह्मा बाबा ने, उसका कंपाउंड था, उस कंपाउंड में क्लासेस शुरू किया। और वहाँ ही दादी प्रकाशमणि जो है पहली बार ब्रह्मा बाबा को मिले थे। जब दादी ब्रह्मा बाबा को मिले, उसके पहले 2-4 दिन पहले ही बाबा दादी को सपना आया था। सपने के अंदर श्री कृष्ण जो है गेंद जो होता है, बॉल जैसा, फुटबॉल के जैसे बॉल होता है, वो खेलता था। और खेलता था तो उसके पर्सनालिटी बहुत मनमोहक थी, तो उसके कारण उसके साथ में फिर बहुत दादी भाव विभोर हो गए थे। और 2-4 दिन के बाद ही उनकी एक सखी ने कहा कि यहाँ पर जो है लेखराज दादा जो है वो बहुत अच्छा आध्यात्मिक प्रवचन करते हैं, चलो तुम। तो जैसे ही जसोदा भवन के कंपाउंड के बाहर खड़े रहे, अंदर तो बाबा का क्लास चलता था मुरली का, और दादी ने देखा कि दादी प्रकाशमणि ने देखा कि वो जो कृष्ण जो उन्होंने 2-4 दिन पहले सपनों में देखा था, वो वहाँ पर फिर खेलता खेलता यहाँ आया, उनके सामने आया। और वो खेलते खेलते पीछे जाता रहा, और जाते जाते पीछे में हटते हटते ब्रह्मा बाबा के अंदर, उनके शरीर के अंदर वो विलीन हो गया। तो दादी ने सोचा ये क्या हो रहा है, कृष्ण का जो सपने में दर्शन किया था वो यहाँ भी किया, और वो यहाँ आकर के देखती हूँ तो दादा लेखराज के उसके अंदर बॉडी के अंदर प्रवेश करके चला जाता है। दादी तो फिर भी सुनने के लिए बैठी, और इतना ज्ञान का नशा उनको हो गया कि उस नशे के अंदर वो खो गई। क्लास पूरा हो गया, सब चले गए, शतरंजी जो थे उसको निकाल रहे थे, तो निकालने वालों ने दादी को उठाने को कहा। ब्रह्मा बाबा वहाँ ही थे, ब्रह्मा बाबा ने कहा कि उसको रहने दो, वो ज्ञान की मस्ती में है, उसको मस्ती में मस्त रूप में रहने दो। आधा पौना घंटा इस प्रकार से मस्ती में रही दादी। वो दादी का पहला पहला परिचय था ब्रह्मा बाबा के साथ, मतलब यज्ञ की शुरुआत का ही दिन जो था, एकदम शुरुआत का, ऊपर का 10x10 का कमरा, फिर 20x10 का, फिर 30x10 का, और फिर कंपाउंड में क्लासेस शुरू हुआ, और कंपाउंड में क्लासेस शुरू हुआ और दादी जी का परिचय ब्रह्मा बाबा के साथ हुआ, और फिर तो दादी जी रेगुलर स्टूडेंट बन गई। फिर हॉस्टल बनना का था तो दादी जी ने अपने पिताजी को कहा कि मैं वहाँ जाऊँ, तो पिताजी ने फट से एक सेकंड में चिट्ठी लिख दिया। तो दादी जी को भी आश्चर्य हुआ कि पिताजी ने कुछ सवाल भी नहीं पूछा, प्रश्न नहीं पूछा, क्या हो गया। तो दादी जी ने तो कुछ नहीं बोला, पर तो उसकी माता जी ने पूछा कि ये क्या है, आपने क्यों एक सेकंड में पूछा। तो कहा मैं, उसके पिताजी थोड़े ज्योतिष को भी जानते थे, ज्योतिषी भी थे, इन्होंने कहा कि मैंने बचपन से ही ये बच्चे की जन्म को पत्रिका जो है, कुंडली जिसको कहते हैं, वो जन्म पत्रिका में जान बहने सन्यासिनी होती है। तो इस प्रकार से उनके पिताजी के द्वारा छुट्टी मिल गई और यज्ञ के कारोबार के अंदर दादी जी रहने के भी लग गए। दादी जी वहाँ पर कुंदरमल हाई स्कूल करके है, उस स्कूल के अंदर टीचर भी थे, अरे शिक्षक स्टूडेंट भी थे। इतने में तो फिर तो आप जानते हैं दादी जी क्लास आ गए, समर्पित हो गए। थोड़े दिन के बाद मातेश्वरी भी आ गए यहाँ पर, और फिर बड़ी जानते हैं कि समर्पित बहनों भाइयों का बहुत बड़ा कारोबार शुरू हो गया। मातेश्वरी जी को बाबा ने हेड बनाया था और दादी प्रकाशमणि को मोनी मम्मा, मतलब 3/4 मम्मा, इस प्रकार का टाइटल दिया हुआ था। और 3/4 मम्मा के रूप में जो भी कुमार जैसे जो बच्चे थे उसको संभालने के लिए दादी प्रकाशमणि को वो ड्यूटी दिया हुआ था। और इस प्रकार से कारोबार चलता रहा, आप सब जानते हैं। और उसके बाद कराची, हैदराबाद से कराची और कराची से फिर माउंट आबू आए। माउंट आबू में भी आप जानते हैं पहले ब्रिज कोठी में रहे, उसके बाद दो कोठियां लिए थे, एक तो भरतपुर हाउस और दूसरा कोठी जो है दूसरी कोठी थी कोटा हाउस की और भरतपुर कोठी। इस प्रकार से कोटा हाउस और भरतपुर कोठी कैसे लिया हुआ था वो खाली करने के लिए दिन आए थे। उसके बाद में ब्रह्मा बाबा ने दादी ये पांडव भवन जो है उसका नाम पोखरान हाउस था, वो पोखरान हाउस खरीद किया और वहाँ से कारोबार शुरू हुआ ईश्वरीय सेवा का। आप सब जानते हैं दिसंबर 1952 में कराची से आबू आए और इस प्रकार से आगे बढ़ते गया कारोबार। यहाँ से ही दो बहनें अहमदाबाद गई थी, अहमदाबाद से आबू आए बॉम्बे आई थी, और बॉम्बे आई तो 52 में ही मई 52 में मेरे लौकिक माता जी भी संपर्क में आए। तब से मतलब हमारा भी इनडायरेक्ट डायरेक्ट जो भी कहो संपर्क रहा। दादी जी के साथ थोड़ा कनेक्शन रहा था क्योंकि दादी जी जो है अनेक जगह पर सेवा करते करते जा करके स्थिर हुए थे पटना में। एक वहाँ का भाई था जिसका बहुत अच्छा मकान था, जिसका नाम ही रखा हुआ था किल्ला हाउस, किल्ला जिसे फोर्ट जिसको कहते हैं। इस प्रकार से किल्ला हाउस का मकान जो था उसके अंदर हीरालाल जालन का भवन था, तो दादी जी वहाँ पर सेंटर इंचार्ज के रूप में कारोबार करते थे और वहाँ ही स्थिर थे। आने जाना होता था, हीरालाल भाई भी जब बाबा बॉम्बे में आते थे तब बॉम्बे में भी आए थे, तो उनके साथ दादी जी भी आई है। कृष्णा बहन करके दूसरी बहन थी, वो पढ़ी लिखी थी, एमए तक पढ़ी हुई थी, एमए विद इंग्लिश, वो भी दादी के साथ हीरालाल भाई के साथ बॉम्बे में आए थे। इस प्रकार से संपर्क रहा था थोड़ा, और ज़्यादा कोई संपर्क नहीं था। पीछे क्या हो गया 64 में हमने सोचा कि मम्मा बॉम्बे में थे, हमने मम्मा को कहा कि हम प्रदर्शनी के चित्र बनाए, तो मम्मा ने छुट्टी दे दिया था। तो हमने पहला चित्र बनाया सच्चा वैष्णव कौन, वो सच्चा वैष्णव कौन वो चित्र बनाया, उसकी लिखत बनाई। विष्णु के जो चार अलंकार जो है शंख चक्र पदा पद्म गदा, वो चार अलंकारों का वर्णन के सच्चा अलंकार क्या है उसकी लिखत बनाई। और लिखत बना करके हमने ब्रह्मा बाबा को भेजा कि बाबा हम ये चित्र बना रहे हैं, उसकी ये लिखत है, कि लिखत को आप अप्रूव करो, सैंक्शन करो, तो हम इस चित्र को फाइनल करें। तो बाबा ने उसके चित्र के ऊपर अपनी कमेंट्स भेजी, सजेशन भेजा। तो जब सजेशन आया तो मैंने देखा कि ये बाबा का अक्षर नहीं है, हैंडराइटिंग नहीं है। इसे मैंने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा आपका हैंडराइटिंग नहीं है, आपने तो देखा नहीं है, आपने नहीं देखा है, इसका मतलब आपने सैंक्शन नहीं किया है, तो हम ये चित्र कैसे बना सकते हैं। तो बाबा ने लिखा कि बच्चे यहाँ अभी कुमार का बच्ची जो है पटना से यहाँ पार्टी लेकर के आई है, और कुमार का बच्ची को मैंने ये ड्यूटी दिया कि तुम ये चित्र की लिखत पढ़ो, और मैंने ही उसको दिया है छुट्टी कि तुम्हारे साथ उस चित्र की, इस कनेक्शन की, चित्र की जो कहानी जो है, वार्ता जो है, डिस्क्रिप्शन जो है, उसके बारे में उत्तर दे दे रहे। तो मैंने फिर बाबा को लिखा कि बाबा अगर कुमार का दादी को ही, कुमार का उस टाइम पर दादी नहीं कहते थे, बहन जी कहते थे, कुमार का बहन जी को ही अगर ये चित्र की मैटर बनाना है, सैंक्शन करना है, तो उनको ही क्यों नहीं बॉम्बे भेज देते हैं, आपकी तरफ से आपकी फुल ऑथोरिटी के साथ वो आएंगे और हमारे चित्रों का कारोबार उनसे शुरू हो जाएगा। तो बाबा ने इस बात को माना और बाबा ने टेलीग्राम ही किया कि ऋषि कुमार का भाई सचिन सच ट्रेन, और उस प्रकार से दादी जी 63 की बात है, 63 में ही मई महीने में करीब बॉम्बे में आ गए, और फिर चित्र बनाने का कारोबार जोर से उससे शुरू हो गया। उसके पहले बीच में बता दूं, एक बात बताना भूल गया, 53-54 के अंदर दादी जानकी जो है और जगदीश भाई आदि जो भी है, मतलब वो अमृतसर में गए थे, एक निरंकारी संप्रदाय जो है उसके वहाँ कॉन्फ्रेंस जैसा था, वहाँ गए थे। वहाँ पर मालूम पड़ा था कि जापान में सेकंड वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस है 1893 में शिकागो में हुई थी, जिसमें स्वामी विवेकानंद गए थे, और ये एनानाइतो करके संस्था जो है उसके द्वारा हुई थी, होने वाली थी। वो समाचार मिला था तो दादी रतन जानकी ने ब्रह्मा बाबा को पत्र लिखा कि ऐसे ऐसे कॉन्फ्रेंस होने वाली है, अपना डेलीगेट को जाना चाहिए। तो दादी प्रकाशमणि को और दादी रतनमणि को दोनों को बाबा ने कलकत्ता भेज दिया, और कलकत्ता जा करके कहा कि तुम वहाँ जाओ, वहाँ से सब बातों का बंदोबस्त हो जाएगा। मैंने दादी को पूछा था कि दादी आप ऐसे ब्लाइंड फेथ पर कैसे गए, ना आपको कॉन्फ्रेंस कौन करने वाला है वो मालूम था, उसका एड्रेस मालूम था, तारीख तिथि कुछ मालूम नहीं था, आपके टॉपिक क्या है वो भी मालूम नहीं था, और बाबा ने आपको कहा कि कलकत्ते जाओ, आपके पास तो पासपोर्ट भी नहीं था, वीजा भी नहीं था, निमंत्रण भी नहीं था, आप कैसे चले गए। दादी ने कहा कि रमेश ये तेरे प्रश्न होते हैं, हमारे ये प्रश्न नहीं है। हम तो बाबा ने कहा, माना सतवचन महाराज के बाबा ने डायरेक्शन दिया जाओ कलकत्ता, हम चले गए। ये बताता है, सिद्ध करता है कि दादी जी का बाबा में कितना विश्वास था। अब वो विश्वास को हमारे जो बुद्धिजीवी कहेंगे ये अंधविश्वास था, और दादी जी के ही कहने के हिसाब से पूर्ण विश्वास था कि बाबा जो कहते हैं वो होता ही है, वो होने वाला ही है। और उस प्रकार से वहाँ कलकत्ते से ही गोविंद दादा जो है, गोविंद उनके द्वारा हैदराबाद वो अपने हांगकांग गए हो, और हांगकांग से उन्होंने जापान में लिखा और पत्र आया, और इसके कारण टेलीग्राम आ गया निमंत्रण का, और उसके आधार पर दादी जी और रतनमयी दादी जी पासपोर्ट ऑफिस में गए, पासपोर्ट एक दिन में मिल गया, जापान के एम्बेसी का वीज़ा एक दिन में मिल गया, और शुक्रवार को एयर इंडिया के ऑफिस में गए, वहाँ से फ्री टिकट भी मिल गई। और इस प्रकार से दादी जानकी, दादी प्रकाशमणि और दादी रतन मोहिनी जी अमेरिका जापान गए, एक साल तक वहाँ पर जापान में घूमते रहे, हांगकांग में आए, वहाँ पर किया दादी जी और रतन मोहिनी दादी, और फिर सेकंड कॉन्फ्रेंस भी होने एक साल के बाद हुई, उस टाइम पर बाबा ने दादा आनंद किशोर को भेज दिया, तो तीन लोग वहाँ पर साथ में थे, और फिर घूमते घूमते सिंगापुर, मलेशिया आदि आदि स्थानों पर घूमते घूमते रतनमयी दादी, दादी प्रकाशमणि और जगदीश भाई हैदराबाद अपने मद्रास के एयरपोर्ट, मद्रास के सी पोर्ट आए, सिंगापुर से एक बस, एक स्टीमर होती, उस स्टीमर में दादी जी और ये तीनों लोग जो है, तीनों की पार्टी मद्रास में आए, जगदीश भाई कहते थे कि मैं उधर गया था रिसीव करने के लिए, तो इसके कारण मुझे मालूम है कि दादी जी सामान में ये जो झाड़ जो है कल्पवृक्ष जो है त्रिमूर्ति का जो चित्र जो है वहाँ से छपवा करके लाए थे, और इस प्रकार से दादी जी 53-54 के वर्ष में 1.5-2 वर्ष वहाँ पर गए थे जापान के अंदर। वो दादी जी के द्वारा कहो तो विदेश सेवा का बीज डाला हुआ था दादी जी ने। तो मैं आपको बता रहा था कि दादी जी बॉम्बे में आए चित्र बनाने के लिए, एक के बाद एक चित्र बनते गए, और हम बाबा को भी समाचार देते रहे, दादी जी भी बाबा को समाचार देते रहे, मम्मा भी समाचार सुनती रही, इस प्रकार से हो गया। और 24 दिसंबर को उसकी प्रदर्शनी की पहली उद्घाटन हुई। महाराष्ट्र के गवर्नर जो है वो पहले आए थे, इन्होंने प्रदर्शनी देखी, दादी प्रकाशमणि ने गवर्नर को प्रदर्शनी के चित्र समझाए, और फिर दादी जी उनको स्टेज पर लेके आए, और फिर स्टेज पर मैंने इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद दादी जी ने प्रवचन किया, और उसके बाद गवर्नर ने प्रवचन किया। तो गवर्नर ने बोला, बहुत अच्छी बात कही कि ये जो प्रदर्शनी जो है वो मैंने एक शब्द में उसकी महिमा लिखी है, मार्वेलस प्रदर्शनी है। मैं सॉलिस्टर हूँ और मैंने इसलिए मैं आपको फीस चार्ज करूँगा, मुझे आपको फीस देना पड़ेगा। तो दादी जी बाजू में ही बैठे थे, इन्होंने कहा कि ठीक है आप जो भी फीस मांगेंगे हम आपको दे देंगे। तो उसने कहा कि मैं समझता हूँ कि फीस के रूप में आप ये प्रदर्शनी जो है, जो मार्वेलस प्रदर्शनी है, उसको न बॉम्बे के कोने कोने में, न महाराष्ट्र के कोने कोने में, न भारत के कोने कोने में, परंतु सारे विश्व के कोने कोने में ये प्रदर्शनी जा करके सबको समझाओ, इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई बताई हुई है। तो दादी जी खड़े हो गए और दादी जी ने कहा कि आपकी बात सही है, आपने सब कहा है और हम जरूर करेंगे। इस प्रकार से दादी जी ने उसका रिटर्न में जवाब भी दिया, और फिर दादी जी ने कहा कि हम भी आपसे फीस मांगेंगे। तो गवर्नर ऐसे देखने लगा कि ये क्या फीस मांगेंगे ये बहन। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ फीस है, आप जानते हैं हमारी फीस क्या होती है, एक बार आना 5 खोटे पैसे देना, और एक बार आना एक प्रकार के उस जमाने में कोडवर्ड में ज्ञान सुनाते थे। तो इन्होंने कहा कि आपको आना पड़ेगा 7 दिन का कोर्स करने के लिए। तो गवर्नर खड़े हो गए, कहा मेरा थोड़े टाइम में मेरा रिटायरमेंट होने वाला, आप जानते हैं 5-5 साल के लिए अपॉइंटमेंट होती है, तो 5 साल के बाद मेरा पूरा होगा, तो मैं जैसे घर पे जाऊंगा आपके पास 7 दिन के लिए कोर्स के लिए आऊंगा। तो दादी जी ने उसको कहा कि हम आपके घर में क्लास कराने के लिए आ सकते हैं 7 दिन का, आप तो बड़े आदमी हैं, आप VIP हैं। तो मंगलदास पकवासा जो गवर्नर जो थे, इन्होंने कहा कि नहीं, मैं भारतीय संस्कृति को मानता हूँ, भारतीय संस्कृति के मुताबिक उन्होंने दादी जी को कहा कि गुरु जो है वो शिष्य के घर पे नहीं जाता है, परंतु शिष्य जो है वो गुरु के घर पे जाता है। इस प्रकार से दादी जी ने उनको कहा, तो उन्होंने कहा, दादी ने कहा आप खुशी से आ सकते हो। तो इस प्रकार से उस टाइम पर वाटरलू मेंशन जो है बॉम्बे में रिगल सिनेमा के सामने, वहाँ पर दादी जी के पास आए गवर्नर, और इन्होंने क्लास कराना शुरू किया, 7 दिन का कोर्स किया। इसके बीच में क्या हो गया था, जब दादी जी पटना और पटना से बॉम्बे आए, आबू होकर के बॉम्बे आए थे, पटना वालों ने भी बहुत कुछ लिखा कि दादी जी को वापस भेजो हमारे पास, दादी जी को वापस भेजो। ब्रह्मा बाबा ने उनको लिख दिया था पटने के हीरालाल भाई और इनके साथियों को कि दादी बाबा की एक बार लाल कलम चल गई, कि लाल कलम जो हो चल गई उसके बाद कोई उसको मिटा नहीं सकता है, कुमार का बच्ची जो है अब पटना के बदले में बॉम्बे रहेंगे। इस प्रकार से बाबा ने कुमार का दादी को 63 में 1 मई-जून के अंदर ही वहाँ पर बॉम्बे में उसकी क्या कहें सेवा के लिए फिक्स कर दिया पोजीशन। थोड़े समय के अंदर ही क्या हुआ, बाबा ने मुरली में कहा कि मुझे राइट हैंड चाहिए, मुझे कलकत्ता का ईस्टर्न जोन का सेवा संभालने वाला कोई चाहिए। तो दादी निर्मल शांता ने लिख दिया, बाबा मैं कलकत्ता जा सकते हूँ। तो बाबा ने उनको भी लिखा कि आप जाओ कलकत्ता जाओ। तो हम सब ने भी बहुत कुछ दादी को बाबा को लिखा कि कलकत्ता कैसे जाएंगे, दादी निर्मल शांता तो हमारी प्रदर्शनी बनने वाली है, बन रही है, उसके लिए यहाँ रखो तो बाबा ने कहा कि एक बार लाल साई से निखत हो गई, वो मिट नहीं सकती है, और अभी तो आपके पास कुमार का बच्ची है, कुमार का बच्ची को मैं वहाँ ही रखता हूँ और दादी निर्मला शांता को उनको कलकत्ता भेजता हूँ। हमने कहा ठीक है। तो इस प्रकार से दादी जी जो है बॉटलो मिशन सेवा केंद्र की मुख्य संचालिका बन गई। और फिर मैंने आपको बताया इस प्रकार से गवर्नर को भी 7 दिन का कोर्स कराया और कई सेवाओं का प्लान बनाया, सेवा के साथी बने। उसके बाद होटल मेंशन छोड़ना पड़ा और दारुल मुल्क में सेवा केंद्र ट्रांसफर हुआ। ये भी एक कहानी है खुशी। हम मेरे दादी जी, मैं और उषा और दादी जी जा रहे थे, तो दादी ने कहा कि देखो दादी जी को विचार होता है कि अभी होटल मेंशन छोड़ना है, हम कहाँ जाएं। तो इतने मैंने कहा कि आप बताओ आपको कहाँ जाना है, आपको कौन सा मकान पसंद है। तो वो जो दारुल मुल्क जो है सेवा केंद्र जो है उसके कॉर्नर पर वो है ट्रैफिक सिग्नल है, तो ट्रैफिक सिग्नल पर हमारी गाड़ी रुकी हुई थी। तो दादी जी ने दारुल मुल्क की तरफ ही इशारा किया कि अगर ये मकान में जगह मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो उषा और हमने दोनों ने हमें आपस में हंसे क्योंकि हमने दारुल मुल्क में ही एक फ्लैट बुक करा किया हुआ था। तो इसलिए हमने दादी जी को कहा ठीक है आपकी जो बात है हमने नोट किया हुआ है। हमने घर में जाकर के शांता माता से बात किया और उसके बाद हमने वो दारुल मुल्क का फ्लैट जो है दादी जी के कहने पर दादी जी को ही और ब्रह्मा बाबा को मतलब लिखा और ब्रह्मा बाबा ने सेंटर को शिफ्ट करने के लिए कहा। इस प्रकार से दादी जी के कारण, दादी जी के शुभ संकल्प के कारण दारुल मुल्क के अंदर बॉम्बे में सेवा केंद्र खुल गया। और उसके बाद तो सेवा बढ़ती रही, आप जानते हैं क्या क्या होता है, कॉन्फ्रेंसेस हुई और महाबलेश्वर में भी 15 दिन के लिए प्रदर्शनी दादी ने कराई और उस प्रकार से हम सब दादी जी के कनेक्शन से महाबलेश्वर भी 15 दिन रहे। इस प्रकार से सेवा बढ़ती रही। इतने में बाबा को मैं पत्र लिखता रहता था कि बाबा अपना कोई ट्रस्ट होना चाहिए, व्यक्तिगत नाम पर संपत्ति होती है तो क्या हो सकता है, क्योंकि दादा विश्वकिशोर के नाम पर पांडव भवन था, बीटी कृपलानी, बेरुमल टी कृपलानी। मैंने कहा देखो उसके नाम पर से 4 दादियों के नाम पर करने में स्टैम्प ड्यूटी का फालतू खर्चा हुआ, इसके बदले में एक बार संस्था को बन जाती है, संस्था रजिस्टर्ड हो जाती है तो फिर उसके नाम पर संपत्ति होती है तो कोई किसी को नाम बदलने करने का खर्चा नहीं होता है। तो वैसे हमारा बाबा के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस होता रहा। खूबी की एक बात यह थी मेरे हैंडराइटिंग जो है ना वो ब्रह्मा बाबा ही पढ़ सकते थे, यीशु दादी नहीं पढ़ सकते थे। और मेरा हैंडराइटिंग इसलिए बाबा मेरा पत्र जो है ना यीशु दादी से हाथ में से ले लेते थे कि तुम ये बच्चे नहीं पढ़ सकेंगे, रमेश का पत्र मैं पढ़ता हूँ। और इस प्रकार बाबा हमको पत्र लिखता था, इस प्रकार से डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस होता था। तो इस प्रकार से बॉम्बे के अंदर भी ये प्रदर्शन ये ट्रस्ट बनाने की बातों में 8-10 बार बाबा से पत्र व्यवहार किया। और इसके बाद नवंबर 68 में बाबा ने पत्र लिखा दादी प्रकाश मुनि को कि बच्ची रमेश बच्चा जो है घड़ी घड़ी लिखता रहता है, ट्रस्ट बनाना चाहिए। तो ये ट्रस्ट क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में दादी प्रकाश मुनि को कहा कि आप और रमेश बच्चा दोनों आबू में आ जाओ, यहाँ आनंद किशोर भी है और दीदी मनमोहिनी भी है, दोनों यहाँ आप 4 की कमेटी बनाता हूँ और 4 कमेटी बना करके उसमें नक्के करें कि ट्रस्ट में क्या क्या होना चाहिए। तो इस प्रकार से दादी जी और मैं यहाँ पर आए। दादी जी ट्रस्ट के कारोबार में शुरू से ही, उसके निर्माण करने के कारोबार से ही दादी जी उसके अंदर मददगार रहे। और फिर रोज रात दिन में हमारी मीटिंग होती थी, रात को दादी जी हम दीदी मनमोहिनी और आनंद किशोर दादा तो ब्रह्मा बाबा को रात्रि क्लास में वही बात आज के दिन में क्या हुआ वो सुनाते थे और बाबा से जो भी कंसर्न मिलती थी उसके आधार पर हम आगे बढ़ते रहे। फिर बाबा ने छुट्टी दे दिया और बाबा ने कहा कि जाओ बच्चे बॉम्बे जाओ। दादी जी और मैं जो है हम दोनों बॉम्बे वापस आए, बॉम्बे में आकर के ट्रस्ट डीड जो है उसको रजिस्टर कराया और उसमें दादी जी भी वहाँ पर हाजिर थे। उसके बाद वो चलता रहा कारोबार, थोड़े ही दिन रहे, जितने में क्या हुआ था कि मातेश्वरी जी ने शरीर छोड़ा था, आप जानते हैं, अभी तो अभी अभी ये गई 25 तारीख ऐसी कोई तारीख अभी आप सब जानते हैं। तो उसके बाद मैं बाबा को पत्र लिखता रहता था कि बाबा अभी जो यज्ञ की मुख्य संचालिका है मातेश्वरी जो है उसने तो शरीर छोड़ दिया है, अव्यक्त हो गए हैं, तो उसकी जगह पर किसको आप निमंत्रण कर देंगे, किसको चीफ बनाएंगे, उसको तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी संस्था होती है उसका हेड तो कोई ना कोई होता ही है, तो इसके लिए आपको इसका हेड बनाना पड़ेगा। तो इसके कारण ब्रह्मा बाबा ने 1 अप्रैल 1966 उस दिन बाबा ने मुरली के अंदर जो उस टाइम पर लिथो होती थी, लिथो के अंदर ब्रह्मा बाबा ने अपने हैंडराइटिंग्स में लिख दिया कि मैं ब्रह्मा कुमारी प्रकाश मणि को मुख्य संचालिका और दीदी मनमोहिनी को मुख्य मुख्य सह संचालिका तो एडिशनल चीफ बनाकर देता हूँ, अपॉइंट करता हूँ। इस प्रकार से 1 अप्रैल 1966 से दादी प्रकाशमणि यज्ञ की मुख्य संचालिका बनी और साथ में मुख्य सह संचालिका के रूप में दीदी मनमोहिनी बने। दीदी मनमोहिनी बॉम्बे में आबू में रहते थे ब्रह्मा बाबा के पास और दादी प्रकाशमणि बॉम्बे में हमारे पास रहते थे। तो जब ट्रस्ट बन गया और बॉम्बे में हम गए उसके बाद मैंने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा आपने दादी प्रकाशमणि को यज्ञ की मुख्य संचालिका के रूप में नियुक्त किया है, परंतु यहाँ तो कोई उसको मुख्य संचालिका मानता ही नहीं है। बॉम्बे में भी जो सेंटर 3-4 खुले हुए हैं वो हर एक इंडिपेंडेंट है, कोई दादी प्रकाशमणि के कंट्रोल में नहीं है, दादी प्रकाशमणि को हेड नहीं मानते हैं। जब कोई बॉम्बे वाले हेड नहीं मानते तो सारा यज्ञ दादी प्रकाशमणि को कैसे हेड मानेगा, और उनको आपने बॉम्बे में रखा हुआ है और दीदी मनमोहिनी को अपने पास रखा है और हेड को आप बॉम्बे में रखा है तो उसको ट्रेनिंग क्या मिलेंगी। तो बाबा ने पत्र लिखा कि बच्चे मैं क्या करूं, दोनों को तो मैं यहाँ नहीं रख सकता हूँ, इसलिए एक को तो बाहर रहना पड़ेगा, दीदी मनमोहिनी यहाँ है बाबा के पास, तो इसलिए बॉम्बे में तुम्हारे पास दादी प्रकाशमणि को रखा है। मैंने कहा बाबा कोई रास्ता निकालो, दादी प्रकाशमणि को भी ट्रेनिंग तो मिलनी ही चाहिए। तो बाबा ने युक्ति निकाली और दीदी मनमोहिनी को पंजाब और दिल्ली ये सब जगह पर जो है यूपी आदि के जगह वहाँ पर चक्कर लगाने के लिए भेज दिया और बाबा ने दादी प्रकाशमणि को कहा तुम आबू आ जाओ। तो मैं दादी के साथ आबू गया और दादी को वहाँ छोड़ करके मैं फिर बॉम्बे आ गया। थोड़े दिन के बाद दादी फिर बॉम्बे आ गई, परंतु 2-4 दिन के अंदर ही बाबा ने फिर उनको बुला लिया कि दादा राम जो है, दादा राम और गोविंद सावित्री बहन जो है, जिसका बेटा गोविंद भाई और लच्छू भाई आदि जो है नवीन भाई, वो सब वो कोई हांगकांग में है, कोई लंदन में है, कोई अमेरिका में है, वो उनके परिवार दिसंबर महीने में आने वाला था, तो इसलिए बाबा ने उनको बुलाया कि तुम इधर आ जाओ, बाबा कितना को ध्यान रखेंगे इसलिए तुम आ जाओ। तो दादी प्रकाशमणि फिर वो आबू चली गई और फिर आबू में ही थी। इतने में ही आप जानते हैं 18 जनवरी हुई और 18 जनवरी के दिन बाबा अव्यक्त हो गए और फिर यहाँ पर मैं दूसरे दिन सुबह 19 तारीख पहुँच गया। दादी प्रकाशमणि, दीदी मनमोहिनी, दादी प्रकाशमणि, संतरी दादी और संदेशी बहन जी, वो तीन वहाँ पर ऑफिस के पास बैठे थे, ईशु दादी साथ में बैठी थी, वो मुझे बाबा के पास लेके गए और मेरा हाथ पकड़ करके दादी जी लेके गए, कैसा ना हो जाए मैं दादी जी बाबा ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त बहुत हुए उसके बाद उसकी बॉडी को देख करके मैं हाँ कुछ अनकॉन्शियस ना हो जाऊँ। मैंने समझा कि इन्हों को मैं सपोर्ट दूँ, वो दादी ने समझा कि मैं रमेश को सपोर्ट दूँ, हम दोनों तीनों सब चारों ही मिल करके गए और उसके बाद मैंने दादी प्रकाशमणि के हाथ जोड़ के कहा कि दादी ने आपने हमारे ब्रह्मा बाबा की बॉडी को सारा दिन और कल रात से है आज सुबह 9 बजे 10 बजे तक आपने संभाला है, ये काम आपने किया है, आगे का काम जो है हम भाइयों का है, आप अगर छुट्टी दो तो आगे का कारोबार हम भाई लोग करें। तो दादी प्रकाशमणि ने मुझे एक ही सवाल पूछा कि आपको इस अग्नि संस्कार का कारोबार करने का अभ्यास है, आप समझ सकते दादी का कितना गहरी चिंतन की बात है कि टू दी पॉइंट सवाल पूछा कि आपको ऐसा अग्नि संस्कार करने का अनुभव है, तो मैंने कहा हाँ, मैं 15 साल का था तब मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ा और उसके बाद कईयों के अग्नि संस्कार में मुझे परिवार की तरफ से जाना पड़ा। तो दादी जी ने कहा कि आप संभालिए। तो इस प्रकार से दादी जी ने अग्नि संस्कार का कारोबार हमको सौंपा। संस्कार के दिन सुबह में मैंने संतरी दादी के द्वारा बाबा को संदेश भेजा कि बाबा अग्नि संस्कार अग्निदान जो देते हैं ना, पहला दान कौन देता है? जैसे दुनिया में होता है, लौकिक में बेटा हो, बड़ा बेटा होता है वो दान देता है, अग्निदान देता है, और उसके बाद और रिश्तेदार अग्नि संस्कार के अंदर मदद करते हैं। मैंने बाबा से पूछवाया कि इधर बाबा का लौकिक बेटा नारायण भी है और भी हमारे दैवी परिवार भी है, कौन अग्नि संस्कार करेगा, अग्निदान कौन देगा? क्योंकि दादा नारायण जो है लौकिक दुनिया के हिसाब से बाबा का बेटा था और उसके लिए वो अग्नि संस्कार कर सकता है। तो बाबा ने मना किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा ने जवाब दिया कि शरीर छोड़ने वाला जो है दादा लेखराज नहीं है, शरीर छोड़ने वाला अव्यक्त होने वाला दादा लेखराज नहीं है, परंतु शरीर छोड़ने वाला आप सभी आत्माओं का अलौकिक पिता। आप जानते हैं हमारे 3 पिता होते हैं, लौकिक पिता, अलौकिक पिता। अलौकिक पिता संगम युग में ही होता है और परम पिता परमात्मा। तो बाबा ने कहा कि ये अलौकिक पिता जो है, सारी मानव समाज जो है उसका अलौकिक पिता जो है उसने शरीर छोड़ा है, ये ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा है, दादा लेखराज ने शरीर नहीं छोड़ा हुआ। और दादा लेखराज के बदले में अभी ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा है, अलौकिक पिता ने शरीर छोड़ा हुआ है, उसका बड़ा बेटा तो दादी प्रकाशमणि है। और इसलिए बाबा ने कहा कि दादी प्रकाशमणि ही अपने दान दे सकती है, उसके बाद मैं नारायण खड़ा रख सकता, आप सब खड़े रह सकते हैं उसके बाद, परंतु अग्नि दान देने के जिम्मेदारी का कारोबार जो है वो दादी प्रकाशमणि करेंगे। तो इस प्रकार से दादी प्रकाशमणि ने अग्निदान का कारोबार किया, बाकी तो सब ने मिलजुल करके किया, वो तो आप सब जानते हो। और उसके बाद 21 तारीख को अग्नि संस्कार का कारोबार हुआ और शाम को ब्रह्मा गुलजार दादी के तन में बाबा आए। गुलजार दादी के तन में आए और बाबा ने जिसको हम कहते हैं क्राउनिंग सेरेमनी, राज्यभिषेक कहते हैं ना, जैसे यहाँ से उदयपुर जाते हैं तो रास्ते में गोगुंदा आता है। गोगुंदा ऐसा शहर है, वहाँ पर एक वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे में महाराणा प्रताप जो है, उसे चित्तौड़गढ़ तो हार गया था, महाराणा प्रताप वहाँ पर उस गोगुंदा के वो कल्प वृक्ष के नीचे में, अभी भी वो वृक्ष है, उसके नीचे में उसका राज्याभिषेक हुआ था। तो राज्याभिषेक बहुत बड़ी बात होती है लौकिक दुनिया के अंदर, कि जो क्राउन प्रिंस होता है वो भी राजा बन रहा है। अंग्रेजी में भी कहते हैं लॉन्ग लिव द किंग, किंग इज डेड। तो इस प्रकार से जो लॉन्ग लिव जो किंग जो होता है उस प्रकार से, तो बाबा ने 21 तारीख को ही मुरली के बाद, मुरली के अंत में ही 2 गुलाब के फूल टेबल पर पड़े हुए थे, उस पर 1 गुलाब का फूल जो है क्राउनिंग सेरेमनी, देखिए दादी जी की क्राउनिंग सेरेमनी, दादी जी को मुख्य संचालिका के रूप में दादी जी के मस्तक पर वो रखा, और दूसरा फ्लावर जो था वो दीदी मनमोहिनी के सिर पर रखा। और इस प्रकार से बाबा ने क्राउनिंग सेरेमनी का किया, अग्नि संस्कार में भी ऐसा ही हुआ। और इस प्रकार से ये भी हुआ, आप लोगों ने क्रिश्चियनिटी पढ़ा हुआ होगा तो उसके अंदर भी ऐसा ही है, क्राइस्ट ने जो है अगले दिन लास्ट सफर के अंदर सेंट पीटर जो था उसको क्राउनिंग सेरेमनी के दिए कि आप तुमको अभी सब फादर कहेंगे और आप मेरे शरीर छूटने के बाद आगे का कारोबार तुम संभालेंगे। इस प्रकार से सब जगह पर ऐसा ही होता है, बड़ी जो होते हैं राजा के बाद उसका बड़ा बेटा होता है वो मुख्य संचालिका के रूप में या तो मुख्य संचालक बनता है। तो इस प्रकार से दादी प्रकाशमणि ऑफिशियली तो पहली अप्रैल 1966 में ब्रह्मा बाबा ने अपने हाथों से अपॉइंट कर दिया था, परंतु तब तो ब्रह्मा बाबा थे इसलिए इतना कारोबार इनके हाथ पर नहीं था, सब ब्रह्मा बाबा ही संभालते थे। परंतु 18 जनवरी के बाद 21 जनवरी के दिन क्राउनिंग सेरेमनी दादी जी की ऑफिशियल हुई, और क्राउनिंग सेरेमनी के अंदर 21 जनवरी 1969 से दादी जी जो अव्यक्त हो गया तब तक दादी प्रकाशमणि मुख्य संचालिका के रूप में कारोबार करती रही। आप गिनती कर सकते हैं 1969 से गांधी जी 2007 में, ऐसा कुछ तारीख आप सबको मालूम है उस प्रकार से कितने वर्षों में दादी जी ने यज्ञ की कारोबार संभाली। बाद में दादी जी सबसे मिले करे, कई कई लोग से वापस गए, लास्ट में मैं और उषा निकल रहे थे, तो मैं और उषा निकल रहे थे तो मेरे को दादी प्रकाश मुनि ने कहा, रमेश उषा तुम मुझे भी छोड़ करके यहाँ जाएंगे बॉम्बे में, तो आप मेरे साथ में थे हर कदम पर, आप दोनों की मदद से सेवा बढ़ती गई थी, बड़ा आप मदद नहीं करेंगे। हमने कहा दादी हमने देख लिया कि आपके अंदर अभी परमात्मा की वो शक्ति आ गई है यज्ञ कारोबार करने के लिए। तो दादी जी ने पूछा कैसे आ गई, क्या आपने देखा? आप सबको मालूम नहीं होगा, ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा था, अव्यक्त हो गए थे, तो ब्रह्मा बाबा की बॉडी बीच में रख करके हमारे दैवी परिवार के कई बहन भाई जो है उनके बॉडी के आजू बाजू बैठ करके फोटोग्राफ निकाला हुआ था। तो यहाँ पर मिलिट्री जो है, मिलिट्री का एक फोटोग्राफर था, ऑफिशियल फोटोग्राफर था एक, वो फोटोग्राफर ने सब फोटो निकाले थे और करीब 8-10 रोल निकाले हुए थे, क्योंकि हर एक की इच्छा थी कि ब्रह्मा बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा के मुख को अपनी गोद में ले या उनके साथ में हाथ में सेकेंड करते रहे, ऐसा ऐसा फोटो निकालने का हर एक की इच्छा थी। तो जो फोटोग्राफर था उसने निकाला फोटो और हो गया, हमको कब पूछा कि मैं फोटोग्राफ निकालूं, हमने कहा निकालो, उसमें क्या बड़ी बात है। फिर वो फोटोग्राफर जो है उसने उसमें माया आ गई, तो उसने आकर के हमको कहा कि मुझे 50,000 दो तो मैं आपके फोटोग्राफ जो है आपको दे दूंगा, नहीं तो ये फोटोग्राफ जो मैं आर्य समाज को दे दूंगा कि देखो ये लोग क्या करते हैं, ब्रह्मा बाबा के साथ क्या करते हैं। मैंने कहा क्या करते हैं, डेड बॉडी के साथ क्या कर सकते हैं, डेड बॉडी को सबने अपने गोद में लेकर के यहाँ तो सेकेंड करते हुए सर ऐसे फोटो निकाल पाए, उसमें क्या बड़ी बात है। कहा नहीं मैं ऐसा करूँगा, तो मैंने दादी प्रकाश मुनि को बात किया कि दादी जी ये सरदार था शायद ऐसा ही कोई था, तो उन्होंने 50,000 रुपये मांगा हुआ है। तो दादी जी ने मुझे पूछा कि क्या करूँ, मैंने कहा दादी जी हम कोर्ट में जावे केस करें स्टे ऑर्डर लावे उसमें बहुत टाइम चला जाएगा, इसके बदले में आप जो है दादी जी आप उनको प्यार से समझाइए कि बाबा के काम है, तुम बाबा के काम में, उसकी अंतिम इच्छा के रूप में अंतिम दिनों के अंतिम बॉडी के जो फोटोग्राफ निकाले उसका हमको ब्लैकमेल क्यों करता है, इस प्रकार से समझाओ। दादी जी ने कहा ठीक है, और दादी जी ने वो फोटोग्राफर जो था उनको बड़े प्यार से समझाया, और इसके कारण उसने क्या किया ठीक है, नेगेटिव सब लेकर के सब फोटोग्राफ निकाल करके लेकर के आया और दादी जी के हाथ में दिया कि लो दादी जी मैं सरेंडर करता हूँ आगे फोटोग्राफ। तो मैंने दादी जी को कहा कि अभी तक ब्रह्मा बाबा जो कार्य करते थे अभी आपको बाबा ने निमित्त बनाया है, और इसलिए आपने पहली परीक्षा एक फोटोग्राफर जो है फोटोग्राफ के रूप में आप फोटोग्राफ के कारण आपको ब्लैकमेल कर रहा था, 50,000 मांग रहा था, उसको आपने प्रेम प्यार से समझा करके उनके रोल जो होता था फिल्म का रोल होता है उसका भी खर्चा नहीं, उसका भी डेवलपमेंट करने का खर्चा नहीं, उसका भी एनलाइनमेंट करने का खर्चा नहीं, वो सब ने उसका पूरा ही आकर के सरेंडर कर दिया। मैंने दादी को कहा कि आप में अभी ये ब्रह्मा बाबा जो कार्य करता था वही कार्य आप हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के रूप में कर रहे हैं, आप में आस्ते आस्ते बाबा आपको आगे बढ़ाएगा और हम आपके पूरे मददगार रहेंगे। इस प्रकार से हम बॉम्बे में गए और इसके बाद में दादी प्रकाश मणि ने यज्ञ के कारोबार आस्ते आस्ते संभाल लिया। सबके सामने ही 21 तारीख को बाबा ने दादी प्रकाश मणि को मुख्य संचालिका और दीदी मनमोहिनी को मुख्य स्व संचालिका नक्की किया था, और उसके कारण उनके साथ में बैठ करके कारोबार जो किया उसके कारण जो है सबको मालूम पड़ गया कि बाबा ने दादी प्रकाश मणि को ऑफिशियली हेड बनाया है और दीदी मनमोहिनी को ऑफिशियली मुख्य स्व संचालिका बनाई हुई। इस प्रकार से दादी जी का कारोबार यहाँ पर चलता रहा, दोनों दादियाँ मिलजुल करके कारोबार करती थी, बहुत अच्छी रीत से कारोबार चलता था। इतने में बॉम्बे में भी कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें दादी जी आकर के दादी जी ने वो सारा कॉन्फ्रेंस का कारोबार संभाला। उस प्रकार से करते रहे। इसके बाद एक कॉन्फ्रेंस दिल्ली में थी, वो दिल्ली में 71 में थी, तो हम 70 में थी, तो 70 में जब कॉन्फ्रेंस थी तो उसके बाद हम लोग आपस में वापस आ रहे थे, तो जयपुर के अंदर गए, रुके जयपुर में रुके, तो वहाँ पर सभी बड़े महारथी आए हुए थे जयपुर के अंदर भी, तो वहाँ पर मीटिंग हुई और इसके अंदर नक्के हुआ, दादी प्रकाशमणि की अध्यक्षता में वो मीटिंग चली कि विदेश यात्रा और विदेश यात्रा के द्वारा विदेश की सेवा शुरू करनी चाहिए। 70 के अंदर ही नक्की हुआ, और उसके बाद उसकी तिथि तारीख भी नक्की हुई, उधर लंदन से बातचीत करते रहे, और 15 जुलाई 71 को हम छः जो डेलीगेट्स जो है, जगदीश भाई और मैं भाइयों में थे, बहनों में शील दादी, दादी शैलेंद्रा जो है हमारी चीफ थी, हेड थी, रोजी बहन थी जो मद्रास में रहती थी, मद्रास तमिलनाडु जोन बनाने में निमित्त बनी, हमारी डॉक्टर निर्मला जो है जो अभी तो यहाँ ज्ञान सरोवर में भी है और बाकी ऑस्ट्रेलिया आदि के निमित्त बनी, और उषा जी जो थे, वो इस प्रकार से 6 डेलीगेट्स गए थे। दादी जी के कहने पर दादी जी से मार्गदर्शन मिलता रहा और हम लोग गए बॉम्बे से, पहले बेल्जियम गए, बेल्जियम से फिर लंदन गए, लंदन से फिर अमेरिका गए, अमेरिका में हमारा ग्रुप का दो टुकड़ा हुआ, एक ग्रुप जो है कैनेडा तरफ गए, उसमें मैं था, उषा जी थे और निर्मला बहन थी, और साउथ में जमैका आदि के स्थानों पर रसील दादी, जगदीश भाई और रोजी बहन गए, और फिर हम सब वापस हांगकांग में मिले, और फिर हांगकांग से फिर मैं तो जल्दी आ गया, वो लोग आगे चलते रहे, उसने में बीच में ही अमेरिका से ही अपनी निर्मला डॉक्टर जो है वो लंदन गई, और लंदन का सेवा केंद्र 23 सितंबर को 71 को शुरू हुआ, इस प्रकार से शुरू हुआ, और बाद में तो आप जानते हैं सेवा बढ़ती रही। फिर बॉम्बे में, दिल्ली में मेला हुआ, दिल्ली के मेले के बाद बॉम्बे में मेला हुआ, तो उस टाइम पर भी मेले में संभालने के लिए दादी प्रकाशमणि और दीदी मनमोहिनी दोनों बॉम्बे आए हुए थे, तो वहाँ पर बॉम्बे के अंदर जो भी आए मेले में सब बहाने योग की शिविर किया था, उन सबको कोलाबा सेंटर पर बुलाया था, दादी प्रकाशमणि भी बैठे थे और दीदी मनमोहिनी भी बैठी थी, उन्होंने दोनों ने सबको पूछा क्या करने का, क्या नहीं करने का, कैसे करेगा। इतने में अफ्रीका के राम भाई जो है उसने दादी प्रकाशमणि को और दीदी मनमोहिनी दोनों दादियों को संबोधन किया कि मैं आप सबको निमंत्रण देता हूँ कि आपका सेवा केंद्र हमारे अफ्रीका में भी होना चाहिए। तो दादी ने दीदी मनमोहिनी के सामने दिखा के दीदी क्या करना चाहिए, तो दीदी ने उसको जवाब दिया कि हाँ हम खोल सकते हैं, परंतु आपके पास सेफ्टी क्या है हमारी, क्योंकि हमारे यज्ञ का नियम है 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स है, पहली है हेल्थ, दूसरी है सिक्योरिटी, और थर्ड नंबर पर है सर्विस, सेवा। तो इस प्रकार से हमारी बहनों को हम आपके पास भेजे, उसकी सिक्योरिटी क्या, तो कहा हम बैठे हुए हैं ना, तो कहा आप तो बैठे हो, हम कहाँ ना कहते हैं, तो हमारी संस्था की तरफ से कोई आना चाहिए। तो फिर दीदी मनमोहिनी को, दादी को मालूम था कि मैं और उषा जी जो है अमेरिका में जाने वाले थे, हमारे दोस्त के पास रह करके फिर वहाँ से सेवा केंद्र खोलने के लिए तैयारी करने वाले थे, लंदन में भी जाने वाले थे, लंदन में 2 जगह पर एग्जीबिशन था, और दादी प्रकाश जानकी भी वहाँ पर आई थी, लंदन आई थी 8 अप्रैल 1974 दादी जानकी पहली बार लंदन एयरपोर्ट पर आई। तो इस प्रकार से वहाँ पर गए थे, हमने सेवा करने जाने वाले थे, तो हम तो लंदन गए, और तो राम भाई जो है उसने निमंत्रण दिया था, दीदी मनमोहिनी ने कहा था कि रमेश और उषा अमेरिका जाने वाले हैं, मैं उनको कहूँगी कि इस प्रकार, उन्होंने राजीव प्रकाशमणि से राय सलाह करके उनको कहा कि रमेश उषा को लंदन से आप अपने पास बुला लेना। तो इस प्रकार से हम दोनों वापस अफ्रीका से गए लंदन से, और फिर दादी जानकी को भी बुलाया, और इस प्रकार से अफ्रीका की सेवा शुरू हुई, और फिर हम तो लंदन अफ्रीका की सेवा में दार एस सलाम और नैरोबी, मनरोविया, आदि के साथ, आदि जानकी के साथ घूम करके फिर वापस लंदन आए और लंदन से हम वापस बॉम्बे में आ गए। ये 74 की बात है। उसके बाद 77 की बात है। 77 में राजीव प्रकाशमणि बॉम्बे में थे और दीदी मनमोहिनी भी वहाँ आई हुई थी। इन दोनों साथ में आबू जाने वाले थे और दादी प्रकाशमणि का प्रोग्राम बन रहा था। जानकी दादी लंदन से निमंत्रण दे रही थी तो दादी जी ने मेरे को कहा, दादी प्रकाशमणि ने, रमेश जी आप भी मेरे साथ लंदन, आप भी मेरे साथ आबू चलो। मैंने कहा दादी मेरा क्या काम है वहाँ, आपको जाना है, आपको निमंत्रण है, मैं क्या कर सकता हूँ। कहा नहीं 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 आप चलो तो सही, दादी जी सामने वाले को जिसको कहते हैं छोटे बच्चों को कैसे मनाते हैं, कैसे करते हैं, इस प्रकार से मेरे साथ भी ऐसा व्यवहार किया कि आप चलो, आपको आना नहीं है पर आप हमको रास्ता बता देना, आप हमारा वीजा का इन सब कारोबार का करना। मैंने कहा ठीक है ऐसा ही हो तो मैं आता हूँ। हम गए आप बॉम्बे में, बॉम्बे से दादी प्रकाशमणि, दीदी मनमोहिनी, हम सब आबू आए। 77 की बात है। और आए और उसके बाद गुलजार दादी के पास संदेश दिया, गुलजार दादी बाबा के पास गई और बाबा ने संदेश में यही कहा कि दादी प्रकाशमणि को जाना है, जरूर जाना है विदेश सेवा के लिए, साथ में रमेश बच्चा जाएगा। तो हमने बहुत कुछ मेहनत किया दादी ने कि साथ में मोहिनी बहन चले या और कोई चले, कोई दादी बाबा ने ना बोल दिया कि किसी को भी जाने की नहीं जरूरत है, रमेश बच्चा दादी के साथ जाएगा और दादी जी का पूरा ही ध्यान रखेगा। तो इस प्रकार से हम लोग निकले लंदन, बॉम्बे से निकले। इतने में क्या हुआ था कि बॉम्बे के अंदर दादी का अमेरिका का वीजा का हमने प्रयत्न किया था तो दादी तो कन्या थी, कुमारी कन्या थी तो हमने उसमें लिखा था कि सी इज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, परंतु अमेरिकन एम्बेसी का जो ऑफिसर था उसने समझा कि ये वहाँ जाएंगी, अमेरिका जाएंगी, वहाँ शादी कर लेंगी, ऐसा कुछ भी हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने स्टैंडर्ड रिप्लाई दे दिया कि यहाँ पर इनको अमेरिका जाने का वीज़ा नहीं मिलेगा। हमने बाबा को पूछवाया कि बाबा दादी को वीज़ा नहीं मिला हुआ है, हम क्या करें। तो बाबा ने कहा बच्चे आगे आगे देखा जाएगा, तुम बेफिक्र होकर के जाओ विदेश सेवा के ऊपर। हम गए बॉम्बे से, हमारा एरोप्लेन कैरो गया, कैरो से फिर जिनीवा जाने वाला था। तो इसके में दादी जी और हम बैठे थे, इतने में एक कैरो से एक अमेरिकन आया, वो हमें दादी ने कहा कि जाओ उनकी सेवा करो, बैठे बैठे क्या करेंगे। दादी जी हमेशा ही हम सबको सेवा का उमंग उत्साह दिलाती रहती थी, तो हमने उनको कहा ठीक, मैं उनके बाजू में बैठ गया। वो बहुत बड़ा आदमी था, अमेरिका की लार्जेस्ट ऑयल कंपनी जो थी मोबिल ऑयल कंपनी जो है उसका वो मैनेजिंग डायरेक्टर था। तो उनके साथ बात किया तो मैंने उनसे पूछा कि आप भगवान को मानते हो, उसने कहा नहीं नहीं मानता हूँ। इसलिए मैंने उनको पूछा आप अपने को आत्मा समझते हो, तो कहा नहीं। मैं फिर दादी जी के पास गया, मैंने दादी जी को कहा कि ये भाई तो बड़ा आदमी तो है परंतु न आत्मा को मानता है न परमात्मा को मानता है, हम क्या करें। तो दादी जी ने, आप जानते हैं दादी जी बहुत युक्ति से समझा सकती है, युक्तिबाज भी हैं, इन्होंने मुझे युक्ति बताई कि उसको कहो क्रिमिनल आई और सिविल आई। आप सब जानते हैं बाबा की मुरली में भी आता है, आज का कलयुग में सबकी क्रिमिनल आई हो गई है, सतयुग में सबकी सिविल आई हो गई है, हो जाएगी। तो उस प्रकार से इन्होंने दादी जी ने मुझे कहा कि उनसे बात करो, तो मैंने उनसे बात किया तो उसने कहा हाँ मैं ये मानता हूँ, अभी क्रिमिनल आई है, हमारे अमेरिका में भी बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत नुकसान होता है तो क्रिमिनल आई के कारण, क्रिमिनल आई को सिविल आई करनी चाहिए, ये ज्यूरिसप्रूडेंस का प्रॉब्लम है। इस प्रकार से बात करते करते उसमें से ही मैंने उसको आत्मा का भी ज्ञान दिया दादी जी के इशारे से और फिर परमात्मा का भी ज्ञान दिया। इतने में जिनीवा आ गया, वो भाई उतर गया, उसने मेरे को कार्ड दिया, कहा कि मैं आपके संस्था आपके बात को मान लेता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ। तो इस प्रकार से दादी जी ने विदेश सेवा का हमको पाठ भी पक्का कराया एरोप्लेन में ही। हम जिनीवा उतर करके फ्रैंकफर्ट गए, फ्रैंकफर्ट में हमारी सूर्य बहन जी जो है वो आए थे रहने के लिए और फिर वहाँ भी दो तीन दिन रहे, वहाँ से फिर लंदन गए। दादी जानकी वहाँ ही थी उस जमाने में, वहाँ वो जो हॉल जो था एक किराए पर लिया हुआ था उसके अंदर वो क्लास होता था, वहां से 8-10 12 दिन रहे और उसके बाद हम वहां से कनाडा गए। कनाडा में टोरंटो के नजदीक में ही सेंटर एक भाई मकान किराया पर लिया था इन्होंने। वहां श्याम भाई और हरदेवी बहन थी और दूसरी डिनिश बहन थी, इन्होंने चंद्रू बहन भी थी, इन्होंने मिलकर के निमंत्रण दिया था। हम उसके पास गए और वहां पर दादी जी ने भी वहां कनाडा में भी बहुत अच्छी सेवा कराई, हम सबको निमंत्रण बनाया निमित्त। फिर अमेरिका का वीजा तो था नहीं, इसलिए दादी जी और हम सीधा ही वहां से निकल करके टांजानिया गए। टांजानिया से फिर कांगो गए, कांगो से फिर वहां गए अपना जाम्बिया गए, जाम्बिया से फिर हम लोग सूरीनाम गए, सूरीनाम से फिर जाम्बिया आए और फिर जाम्बिया से फिर वहां गए मनरोविया, जाम्बिया से फिर मनरोविया गए और फिर जितने में बीच में ट्रिनिदाद गए थे तो वहां पर हमारी मोहिनी बहन जो है, मोहिनी बहन पंजाबी जो अभी न्यूयॉर्क की सेवा संभालती है, उसके पास जब गए तो उसने कहा कि हमारे अमेरिकन एम्बेसी में जिसके घर में वो रहते थे और जिसका घर में दादी जी को रखा था उसकी अमेरिकन एम्बेसी में अच्छी पहचान है, तो उसको लेकर के वो खुद ही वो भाई दादी जी का पासपोर्ट लेके गए और दादी जी का पासपोर्ट के ऊपर 7 दिन का वीजा लिखवा करके लाया। तो इसके कारण हम लोग जो है मनरोविया गए, वहां से फिर अमेरिका में गए तो अमेरिका के अंदर मतलब न्यूयॉर्क उतरे, न्यूयॉर्क से फिर टेक्सास में गए जहां उस टाइम पर हरदेवी बहन और श्याम भाई वहां टेक्सास में रहते थे और वहां पर दादी जी और हम लोगों ने सेवा किया। वहां ही अपने हंसा डॉक्टर जो है डॉक्टर हंसा रावल वहां भी टेक्सास में ही अपनी सेवा केंद्र संभालती है, वो भी वहां इसी हिसाब में वो हंसा रावल ने कहा कि रमेश भाई आपके कहने से हमारे को हमारे पास ज्ञान का बीज पड़ा और उसके बाद दादी जी आए, दादी जी ने दृष्टि दिया और हमारे में हमारे जो ज्ञान का बीज है वो पक्का हो गया और मैं ब्रह्मा कुमारी जो है दादी की दृष्टि से हो गई। इस प्रकार से दादी जी सेवा करते रहे। वहां पर ही हम लोगों ने नक्की किया कि अमेरिका में सेवा केंद्र होना चाहिए, संस्था को रजिस्टर करना चाहिए, तो दादी जी को हमने कहा कि हम यहाँ सेवा रजिस्टर करें। तो दादी जी ने मुझे कहा कि नहीं रमेश, मैं अभी नहीं कुछ कह सकती हूँ। मैंने कहा क्यों? कहा दीदी मनमोहिनी आबू में है, जो आबू में होता है वही हेड होता है, मैं अभी हेड नहीं हूँ, मैं तो यहाँ सेवा पर हूँ। मैंने कहा दादी जी आपका इंटरनल प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों में कौन करेगा हम क्या कर सकते हैं, आपको नक्की करना है, आपको करना है, हम छुट्टी देते हो या नहीं देते हो। तो फिर उन्होंने कहा उस जमाने में ये टेलीफोन अभी कुछ था नहीं, आज तो क्या है मोबाइल फोन में घड़ी घड़ी कर देते, घर में सब्जी क्या बनानी है वो भी पूछेंगी, इस प्रकार से फोन इतना कॉमन हो गया, उस जमाने में तो कॉमन नहीं था। दादी जी ने कहा कि ठीक है आप यहाँ रजिस्टर कराइए और हम लोगों ने टेक्सास के अंदर वहाँ पर सैन एंटोनियो में संस्था को रजिस्टर करने का दादी जी की परमिशन से अमेरिका में सेवा केंद्र शुरू किया और संस्था को रजिस्टर कराया दादी जी के साथ। दादी जी के शुभ आशीष को जो शुभ इच्छा को जो भी कहो शुभ भावना को उसके आधार पर 77 में दादी जी के कहने पर दादी जी के शुभ आशीष से अमेरिका के अंदर सेवा शुरू हुई। चंद्रू बहन और डिनिश बहन कैनेडा में थे, वो वहाँ से अमेरिका आ गए और अमेरिका के सेवा केंद्र संभालने लगे और इस प्रकार से सेवा बढ़ती रही। फिर अमेरिका से हम फिर वापस लंदन आए दादी जी और मैं, फिर वहाँ से हम गए सीधा ही जहाँ पर अभी चंद्रा बहन ने शरीर छोड़ा हुआ है उस शहर में गए, मॉरिशियस देश में गए। मॉरिशियस देश में गए तो वहाँ पर दादी जी ने बहुत अच्छी सेवाएं किया क्योंकि वहाँ के कई लोग हिंदी जानते थे और दादी जी को बहुत अच्छा लगा। वहाँ दादी जी बीमार पड़ गए, दादी जी बीमार पड़ गए तो फिर हमने वहाँ पर उनकी दवाइयाँ कराई, तो फिर सबने कहा डॉक्टर ने कहा कि उनको फ्लू हुआ है, आप दादी जी को फ्लू हुआ है तो आगे उनका सेवा बोले। हमने कहा हमारा तो सब प्रोग्राम बना हुआ है, तो कहा भले ले जाओ परंतु उनसे मेहनत नहीं कराना। हमने कहा ठीक है, हम मॉरिशियस से सीधे ही पर्थ होकर के सिडनी गए, सिडनी में रिसीव किया और सिडनी में ही फंक्शन था दोपहर में, तो दादी जी ने मुझे बुलाया कहा रमेश मैं थोड़ा आराम करती हूँ और मैं अब आप 10 मिनट आराम करके फिर आती हूँ, आप जा करके अपना कारोबार भाषण करने का शुरू करो। मैंने कहा जैसे दादी आपकी आज्ञा हो ऐसा हम करेंगे। टॉपिक क्या था हमें मालूम नहीं था। जहाँ पर हम जिस होटल में प्रोग्राम था उसके नीचे में एक भाई रिसीव करने वाला था, हमने उनसे पूछा कि टॉपिक क्या है, तो कहा मुझे मालूम नहीं है। फिर ऊपर हॉल के बाहर एक भाई रिसीव करने को खड़ा था, उसको मैंने पूछा क्या टॉपिक है, उसने कहा मुझे मालूम नहीं। हम स्टेज पर गए तो केन भाई जो है उसने बोल दिया कि रमेश भाई अभी टॉपिक पर प्रवचन करेगा, और टॉपिक नहीं बोला। हमने कहा तो बहुत बड़ी परीक्षा ले रहे हैं ये लोग। हमने दादी जी को याद किया कि दादी जी आप 10 मिनट में जल्दी आ जाना, मैं शुरू करता हूँ। और जैसे पोडियम जो है उसको छोड़ करके केन भाई स्टेज पर आ रहे थे हमसे अपनी सीट लेने की, तो मैंने उनसे पूछा भाई टॉपिक क्या है, तो इन्होंने टॉपिक बताया और उसके बाद हमने इसके ऊपर भाषण करना शुरू किया। हमने दादी जी को बहुत मन में याद किया, दादी जी जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। दादी जी को थकावट के कारण और कमजोरी आ गई थी, इसके कारण दादी जी 1.5 घंटा के 2 घंटा सो गए। 1.5-2 घंटे के बाद आए दादी जी, और तो इसके बाद उनको कहा रमेश क्या हुआ, मैंने कहा आप तो आने वाले थे, मैंने इसके लिए चलाया गाड़ी चलाई 10 मिनट के बदले में ये 2 घंटा हो गया। हम दादी जी ने कहा ठीक है ना, बाबा ने आपको चांस दिया सेवा का। इस प्रकार से वहाँ सिडनी से मेलबोर्न इस प्रकार से गए, वहाँ से फिर हांगकांग आए। हांगकांग में भी अच्छी बहुत सेवा हुई, और उसके बाद हांगकांग से फिर हम सिंगापुर गए। सिंगापुर में भी क्योंकि हांगकांग सिंगापुर मलेशिया ये सब देशों में दादी प्रकाशमणि 54 में गए हुए थे, तो इनको मालूम था वहाँ की सेवा का। वहाँ पर कांति भाई करके सिंगापुर में था, उसके द्वारा सेवा हुई, और भी कई लोग थे उधर हांगकांग में भी सेवा हुई। इस प्रकार से दादी जी के साथ सेवा करते करते हम फिर वापस बॉम्बे आए। बॉम्बे के अंदर दीदी मनमोहिनी ने प्रोग्राम बना दिया था कि दादी जी जो है विदेश यात्रा का समाचार जो है भारत के सभी सेवा केंद्रों पर इन्फॉर्म करें, तो दीदी ने वहाँ पर हांगकांग में ही हमको बता दिया था। तो हमने दीदी मनमोहिनी के कहने पर दादी जी का और मेरा सारे हिंदुस्तान में घूमने का एक $400 की टिकट आती थी, सारा हिंदुस्तान घूम सकते हैं इसमें 21 दिन 2 महीना 1 महीना किस प्रकार से हमने 2 महीने की टिकट ले लिया। और मोहिनी बहन को भी बुला लिया, हम बॉम्बे में वो आ गई, और बॉम्बे से फिर अलग अलग स्थानों पर हम गए। उसमें दिल्ली पहुँचे तो दिल्ली वालों ने दादी जी का स्वागत के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था। 2000 जितने भाई बहन थे, दादी जी ने सबको टोली बांटने के लिए, तो दादी जी ने मुझे कहा कि आप भी टोली बांटो, आप भाइयों को बांटो, मैं बहनों को बांटती हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो मैं तो थोड़े लोगों को बैठा दे रहा था तो मेरा तो हाथ दर्द करने लग गया। मैंने दादी जी को पूछा आपके हाथ को क्या हुआ, मैंने कहा मेरे को तो कुछ नहीं हुआ है। मैंने कहा आपके हाथ को कुछ नहीं हुआ और मेरे हाथ दर्द करता है, इसका कारण क्या? तो दादी जी ने कहा मुझे देने की हैबिट है, आपको लेने की हैबिट है, आप भी अभी देना भी सीखो कि आप भी टोली दे सकते हो। इस प्रकार से 800 हजार को देने में क्या बड़ी बात है, आप सीखो। मैंने कहा ठीक है, ये भी सीखने की बात है आपके साथ, ये भी हमने सीखा कि आपने 1200 माताएं थी 1200 को दादी ने टोली दिया, दादी के कुछ फर्क नहीं पड़ा, और मेरा तो हाथ 2 दिन तक दुखता रहा, मैं ऐसा ऐसा करता रहा। तो इस प्रकार से दादी जी का द्वारा ये भी एक्सरसाइज करने को मिली कि कैसे देना चाहिए। देवता माना देने वाला, वो देने वाला के का पार्ट जो है दादी जी ने हम सबको सिखाया, क्योंकि दादी जी ने सबके सामने ही सारे क्लास के बीच में ही सभा के बीच में ही हमको ये कहा था। तो इस प्रकार से हम सब जगह पर गए, फिर वापस आए, फिर आबू में आए। आबू में भी बहुत बड़ा दादी जी का स्वागत हुआ, हमारे मोहिनी बहन भी साथ में थी, इन्होंने दीदी मनमोहिनी ने दादी प्रकाशमणि के स्वागत में फंक्शन भी रखा, और 108 प्रकार की टोली आदि जो भी है भोजन के लिए बनाई, और सबको 2-2 थैलियाँ दिया, और सबको कहा कि ये आपको जितना भी एक्सेस समझ दो इसमें भर दो, एक में फ्रूट भरना दूसरे में जो भी भरना हो उस प्रकार से टोलियाँ भर दो। इस प्रकार से यहाँ पर दादी जी के साथ इस प्रकार से फॉरेन टूर में 4.5 महीना और हिंदुस्तान में आकर के 2 महीना, इस प्रकार 6.5 महीना दादी जी के साथ में रहने का मिला, घूमने को मिला, सीखने को मिला। दादी जी बॉम्बे में रहे तो 63 से 69 तक बॉम्बे में रहे, साथ में रहे। दादी जी को एक बीमारी थी जिसको हम कहते हैं आधा शीशी, तो वो आधा शीशी आधा सिर दुखता है। वो दादी जी को जापान से बीमारी लग गई थी, उसके पहले रतन मोहिनी दादी को बीमारी थी, और रतन मोहिनी दादी और ये दोनों वहाँ लंदन जापान में थे, तो वो बीमारी ट्रांसफर हो गई। रतन मोहिनी दादी की बीमारी चली गई और दादी प्रकाशमणि को ये आधा शिष्य का कारोबार हो गया। तो इस प्रकार से बॉम्बे में थे तभी भी दादी जी को ये प्रॉब्लम रहता था, उसमें बहुत वॉमिट होती है और बहुत सिर दर्द होता है। तो दादी जी को जब भी उसको पहले से ख्याल आ जाता है कि आज मेरा सिर दर्द होने वाला है, तो इसके लिए वो टैक्सी करके हमारे घर पे आ जाती थी दादी जी, और आकर के घर में वॉमिट आदि का कारोबार होता था, दवाइयाँ आदि का कारोबार। हमारे शांता माता, अनिला बहन, हमारी बड़ी बहन जो अनिला बहन और उषा, इन सब ने उनको इतना प्यार से खिलाया पिलाया और ट्रीटमेंट देते रहे। इस प्रकार से दादी जी 6 साल जो रहे हैं बॉम्बे में, उसके अंदर हर साल उनको 8-10 बार तो इसका अटैक आता था आधा शीशी का, आधा शीश दुखने का। तो इसके कारण वो हमारे साथ में रहते थे, घर में आते थे, इसके कारण क्या हो गया, दादी जी के साथ हमारा परिवार का, लौकिक परिवार का बहुत ही घनिष्ठ संबंध हो गया। दादी जी जो है हमारे लौकिक माता जी जो है शांता माता, उसको अपनी माँ कहते थे, और माता जी हमारी माता जी जो है ना कुमार का दादी को कुमार का बच्ची ही कहते थे। जब दादी जी हेड बन गए उसके बाद भी हमारी शांता माता बच्चे बच्चे ही करते थे। मैंने हमारी माता जी को कहा, अभी तो ये हेड बन गई है, आप उसको बच्ची कैसे कहते हो, नहीं कहो। कहा तेरे लिए दादी बन गई, मेरी तो बच्ची है, मेरी तो बच्ची ही रहेगी, अंत तक मेरी बच्ची रहेगी। दादी को दो लोगों ने अपनी बच्ची बनाया था, एक तो हमारी लौकिक माता जी ने अपनी बच्ची बनाया था, और दूसरा भ्राता बीजमोहन जी जो है उनके लौकिक माता जी जो है उन्होंने भी दादी प्रकाशमणि को अपनी बच्ची बनाया था। दो माताओं की दादी प्रकाशमणि बच्ची थे, ये कहने में आता है, बाकी तो कुछ ऐसा क्या होता नहीं है, पर मान्यता तो रहती है। मान्यता के आधार पर बच्ची के रूप में माँ का प्यार दादी जी को हमारे घर में भी मिलता रहा, और हमारे घर में ट्रीटमेंट भी होती रही। इस प्रकार से काफ़ी घनिष्ठ संबंध हो गया, और इसके कारण क्या हो गया, एक दूसरे को, उषा को दादी, अनिला बहन को और दादी, इस प्रकार से हमको भी दादी पहचानने लग गई, और उसके कारण एक प्रकार का विश्वास संपन्न हुआ कि इनों के द्वारा काम होगा तो काम बहुत अच्छा होगा, अच्छा रहेगा। इस प्रकार से दादी जी का कारोबार होता रहा। तो हमने आपको बताया 77 के अंदर दीदी दादी जी के साथ 4.5 महीना विदेश टूर पर रहे, 2 महीना दादी जी के साथ भारत में चक्कर लगाया, और उसके बाद यहाँ आए। उसके बाद 1980 में दीदी मनमोहिनी का बाद दादी प्रकाशमणि ने प्रोग्राम बनाया और मेरे को बुलाया कि तुमको जाना है साथ में। साथ में मोहिनी बहन जो है दादी की जो ब्रह्मणी जो है वो, मतलब दीदी मनमोहिनी मोहिनी बहन और मैं, हमको जाने का प्रोग्राम बनाया दादी ने, तो हमको जाना पड़ा दादी दीदी मनमोहिनी के साथ। लंदन गए, अमेरिका गए, कनाडा गए, गयाना गए, इस प्रकार से देशों में गए, फिर वापस लंदन आए और लंदन से हिंदुस्तान आ गए। इस प्रकार से दादी जी ने हमको विदेश यात्रा का भी कारोबार में सिखाया। दादी जी ने हम लोगों को, उषा को निमंत्रित बनाया मिडल ईस्ट की सेवा के लिए, उनको कहा कि तुम मिडल ईस्ट की सेवा संभालो। तो मिडल ईस्ट की सेवा के कारण दादी जी के साथ जो निर्णय हुआ था, इसके कारण उषा को घड़ी घड़ी मिडल ईस्ट में, मतलब दुबई और कुवैत आदि जो भी है मिडल ईस्ट के शहरों में जाना पड़ता था। तो इस प्रकार से दादी जी ने मिडल ईस्ट की सेवा भी हम लोगों के द्वारा बताई, अफ्रीका की सेवा का भी निमित्त बनाया, ऑस्ट्रेलिया भी जाना पड़ा। इस प्रकार से दादी जी ने हमारे द्वारा हमको निमित्त बना करके अपना विदेश सेवा का कारोबार बहुत कराया। इस प्रकार से 77-80 में, उसके बाद 84 में फिर बाबा के पास प्रोग्राम बना, बाबा ने हमको प्रोग्राम दिया। दादी जी ने संदेश भेजा था कि रमेश उषा को यूरोप में सेवा के लिए भेजे, दादी जी ने ही बाबा का संदेश भेजा था, मुझे तो मालूम भी नहीं था। बाबा ऊपर हिस्ट्री हॉल के अंदर आए, हिस्ट्री हॉल के बाद बाजू में जो बाबा का कमरा है वहाँ पर दादी जी ने उन बाबा को निमंत्रण दिया था, और दादी जी ने बाबा को कहा कि इन दोनों को बाबा छुट्टी दो, उनको यूरोप की सेवा के लिए जाना है। तब तक हम यही मानते थे कि विज्ञान वैज्ञानिक की सेवा करना हमारी कोई फर्ज नहीं है, क्योंकि विज्ञान तो विनाश के लिए है। तो बाबा ने हम दोनों दादी प्रकाशमणि बीच में बैठे, एक साइड में मैं बैठा, एक साइड में उषा जी बैठे, और बाबा ने कहा कि आप दोनों को यूरोप के साइंटिस्ट की सेवा करने के लिए जाना है। तो मैंने दादी प्रकाशमणि को कहा, अरे बाबा ऐसा क्यों भेजते हैं, हमारा टाइम क्यों बर्बाद करते हैं, हमें वैज्ञानिक की तो सेवा करनी ही नहीं है, विज्ञान तो विनाश के लिए ही है। तो दादी जी ने बाबा को पूछा कि रमेश तो मना करता है कि अरे आप कहते हो कि सेंट्रल यूरोप के वैज्ञानिक की सेवा करने के उसको जाना है, और ये भी कहता है कि विनाश तो विनाश के लिए साइंटिस्ट होने वाला है। तो दादी जी ने हमारे तरफ से सवाल पूछा, दादी जी बहुत अच्छे वकील भी थे, तो इसलिए हमारे तरफ से वकालत किया। तो अव्यक्त बाबा ने मेरे सामने देख करके पूछा, सतयुग में तुम्हारा विमान कौन बनाएगा, सतयुग में तुम्हारा विमान कौन बनाएगा। हमने दादी जी को सामने दादी जी को कहा कि बाबा को कहो हमारा विज्ञान कौन बनाएगी, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम है, क्योंकि विमान कौन बनाएगा मैं क्या जानूं, त्रिकाल दर्शी तो बाबा है। तो मैंने दादी जी को कहा कि दादी जी बाबा को कहो कि सतयुग में विमान कौन बनाएगा, वो बाबा का प्रॉब्लम है। तो बाबा ने दादी जी ने फिर बाबा को कहा कि रमेश तो ना कहता है कि सतयुग में तो सतयुग में तो विमान कौन बनाएगा, वो आपका प्रॉब्लम है, विनाश वालों की क्या सेवा करने की जरूरत है। तो बाबा ने जो बताया कि नहीं, आप बच्चों की फर्ज है वैज्ञानिक लोगों की भी सेवा करनी चाहिए। दादी जी ने दादी जी को कहा कि रमेश को भेजो वैज्ञानिक लोगों की भी सेवा करने के, विज्ञान का स्थापना के कार्य में भी बहुत बड़ा भारी पार्ट है, ऐसा नहीं समझो कि सिर्फ विज्ञान विनाश के लिए है। तो दादी जी ने हम दोनों को समझाया कि देखो बाबा कहता है कि तुम लोगों को जाना चाहिए। तो इस प्रकार से बाबा ने दादी जी को जो कहा उसके आधार पर हम लोग दादी जी के कहने पर लंदन गए और यूरोप में गए और यहाँ के वैज्ञानिक लोगों की सेवा किया। इस प्रकार से 84 में सेवा करते गए, और उसके बाद तो दादी जी भी कई बार विदेश में गए, मोहिनी बहन है और साथी बन करके जाते रहे। हम तो बॉम्बे में रहते थे और यहाँ भी आकर के कारोबार करते थे। ट्रस्ट का कारोबार के अंदर पहले तो हम चार ट्रस्टी थे, दादी शैलेंद्र, मैं, डॉक्टर निर्मला बेन और शांता माता, हमारी लौकिक माता जी। फिर हम लोगों ने यहाँ पर आए और बाबा से पूछ करके ट्रस्ट के अंदर मैनेजिंग ट्रस्टी के रूप में मैं था, परंतु हमारे साथ ट्रस्टी बोर्ड के अंदर हृदय गुलजार दादी और दूसरा चंद्रास दादा को मैं ट्रस्टी बनाया। उसके बाद फिर और एक्सपेंशन किया तो दादी प्रकाशमणि और हृदय मोहिनी दादी, ऐसा कुछ था, इन्हों को ट्रस्टी बनाया। उसके बाद फिर जगदीश भाई, निर्वेर भाई, ऐसे ट्रस्टी वर्क बना करके इस प्रकार से दादी जी कानूनी दुनिया के अंदर भी मददगार बने, और दादी जी का हर समय पर हर बात में हम उनसे निर्णय लेते थे। हमको दादी जी ने एक नई और बात भी सिखाई, मैं हर बात में दादी जी से पूछता था, मैं पॉइंट्स लिख करके रखता था कि दादी जी ये मकान इसके लिए लेने का है, ये इसके लिए है। इस प्रकार से दादी जी से मिल करके आधा पौना घंटा बैठता था, 10-15 पॉइंट होते थे। एक दिन दादी जी ने मुझे कहा कि रमेश कहाँ तक तुम हमको पूछता रहेगा। मैंने कहा क्यों, आप बड़े हैं तो उसको पूछने की हमारी फर्ज है। तो कहा नहीं, बाबा ने आपको जिम्मेदारी दिया है, आप अपने पांव पर खड़े रहो, आप खुद निर्णय करो। मैंने कहा दादी आप बैठे हुए हैं, हम कैसे करें। तो दादी ने कहा कि मैं कहती हूँ ना, आप अपने पांव पर खड़े रह करके निर्णय करो, नहीं तो कैसे आगे बढ़ सकेंगे। तो दादी ने कहा कि ठीक है। मैंने कहा ठीक है, आप कहते हैं तो मैं करता हूँ। तब से दादी जी के कहने के आधार पर हमने अपने पांव पर खड़े रहने का और निर्णय करने का अनुभव किया, अभ्यास किया, और इसी अनुभव के कारण तो मैं अभी आपको मालूम होगा ज्ञानामृत में आर्टिकल लिखता हूँ, MDA मास्टर ऑफ डिवाइन एडमिनिस्ट्रेशन, वो दादी जी के ही कहने के आधार पर हुआ कि दादी जी ने कहा कि अपने पांव पर खड़ा रहो, आपको बाबा ने ड्यूटी दिया है तो ड्यूटी को आप अच्छी रीत से संभालो, आप फिक्र नहीं करो, हम बैठे हुए हैं ना, आपको पूरी मददगार बनेंगे। इस प्रकार से दादी जी ने हमको एनकरेज कर करके यज्ञ कारोबार के अंदर भी आस्ते आस्ते जुटाया। फिर तो ब्रह्मा कुमारी एजुकेशनल सोसाइटी बनी, राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन बना, ये सब बनता रहा। दादी जी उसके चेयरमैन बनते रहे, इस प्रकार से कारोबार सेवा का बढ़ता रहा। फाउंडेशन के द्वारा दादी जी के अध्यक्ष, दादी जी उसके चेयरपर्सन थे और दीदी मनमोहिनी उसके बना हुआ था, बाद में जानकी दादी बनी, उसके फाउंडेशन के वाइस चेयरपर्सन थे। इस प्रकार से सेवा केंद्र से अपने विंग्स का कारोबार भी दादी जी की अध्यक्षता में शुरू हुआ और विंग्स का कारोबार भी अच्छी रीत से चला। जोन्स का भी कारोबार आप सब जानते हैं, दादी जी ने कितना सुंदर इसे यज्ञ कारोबार बढ़ाया। ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हो गए थे 69 में, तब 300-350 सेवा केंद्र थे, मतलब इतने कम से दादी जी ने मेहनत किया और दादी जी की अध्यक्षता में जो कारोबार सेवा का बढ़ा, उसके कारण देश विदेश में सेवा केंद्र खुल गए। अभी आप जानते हो कि देश में कितने सेवा केंद्र है, विदेश में कितने सेवा केंद्र है। इस प्रकार से यहाँ पर बनता रहा, प्रोग्राम बनता रहा, यहाँ यज्ञ में भी विकास होने लगा। दादी जी ने, दादी जी के ब्रह्मा बाबा होते थे तब हिस्ट्री हॉल ही था, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए उसके बाद मेडिटेशन हॉल बनाया दादी जी ने। उसके बाद दादी जी ने सामने वाला यूनिवर्सल पीस हॉल है उसके निर्माण का कारोबार कराया दादी जी ने। उसके बाद दादी जी ने ज्ञान सरोवर का कारोबार बनाया और ज्ञान सरोवर के बाद इतने में दिल्ली में भी ओम शांति रिट्रीट सेंटर ORC बनाया और उसके बाद आप जानते हैं कि नीचे शांतिवन में भी कारोबार शुरू हुआ। शांतिवन का भी कारोबार बड़ी विचित्रता के द्वारा दादी जी ने शुरू कराया और फिर ऊपर से पांडव भवन से हम सब का रहने करने का, कारोबार करने का स्थान जो है ऊपर से बदली होकर के नीचू आए, शांतिवन में आए और शांतिवन की सेवा करने का काम को शुरू किया। 83-84 में आबू में भी ऊपर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई दादी जी की अध्यक्षता में। दादी जी ने बहुत सुंदर विदेश की सेवा के कारण विदेश के बहन भाइयों को, डेलीगेट्स को बुला करके कारोबार कराया। तो इस प्रकार से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस आदि का भी जमाना जो है ईश्वरीय सेवा का, वो दादी जी ने शुरू कराया और उसके बाद कारोबार बढ़ता रहा बढ़ता रहा। दादी जी ने और हमारी दादियों ने एक बार नक्की किया था, दादियों की मीटिंग यहाँ हुई थी, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए उसके बाद, और उसके बाद उन्होंने नक्की किया कि यहाँ पर सेवा में मददगार कौन बनेगा। तो इसके कारण इन्होंने नक्की किया कि निर्वेर भाई, रमेश भाई और बॉम्बे के विजयनाथ आदि के पास एक नितिन भाई था, वो तीन को हम शिफ्ट करें आबू में मंगावे। और तो निर्वेर विजयनाथ आदि ने कहा कि हमको तो सायन में नितिन भाई की जरूरत है, इसलिए नितिन भाई वहाँ रहे और मैं और ब्रिजमोहन भाई और निर्वेर भाई जो है वो सब दादी जी के निमंत्रण पर जो है आस्ते आस्ते यज्ञ कारोबार में दादी जी हमको ट्रेन करते रहे। इस प्रकार से दादी जी हम सबको ट्रेन भी करते रहे, निर्वेर भाई भी साथ में थे, मददगार थे। हम सब पहले बॉम्बे में साथ में सेवा करते थे दादी जी की अध्यक्षता में और फिर दादी जी जब यहाँ आए 69 के बाद, निर्वेर भाई तो फुल टाइम यहाँ हो गए, मैं बॉम्बे में रहता था, बॉम्बे से यहाँ आना जाना करता था। इस प्रकार से हमारा और आना जाना होता रहा दादी जी के साथ। दादी जी बॉम्बे में भी आते रहे, कई बार गए, दादी जी के साथ भी सूर्य सेवा के लिए जाना पड़ता था। फिर दादी जी बीमार पड़ गए हैं, आप सब जानते हैं, उनको मतलब अल्जाइमर्स भी था और भी कई बीमारियाँ थी आस्ते आस्ते। उसके पहले भी दादी जी का बॉम्बे में ऑपरेशन हुआ था, उसकी फूड पाइप जिसको कहते हैं हाइटियस हर्निया, वो दादी जी का हाइटियस हर्निया का बॉम्बे में डॉक्टर पी मास्टर ने ऑपरेशन किया था। वो डॉक्टर पी मास्टर ने ऑपरेशन किया था उस टाइम पर, बॉम्बे में ही थे हम लोग, दादी जी का ऑपरेशन हुआ और अनिलाबेन जो है वो ऑपरेशन थिएटर में दादी जी के पास ही खड़ी रही थी। इस प्रकार से दादी जी का ऑपरेशन हुआ बॉम्बे में हाइटियस हर्निया का वो, और उसके बाद बॉम्बे के अंदर भी, और उसके बाद दादी बॉम्बे से आबू में भी आती रही, आबू में भी ट्रीटमेंट होती रही। इस प्रकार से यहाँ पर भी हुआ, अल्जाइमर्स भी हुआ और इस प्रकार से दादी जी की तबीयत जो है आस्ते आस्ते बिगड़ती रही, उनको थोड़ी याद शक्ति भी कम हो गई अल्जाइमर्स के कारण। और ऐसे चलते चलते आप जानते हैं कल 25 तारीख है, 25 सितंबर को आज से 5-6 साल पहले दादी जी ने अव्यक्त हो गए, अव्यक्त होकर के शरीर छोड़ा। उस टाइम पर हम सब यहाँ ही थे, और हमारे सतीश गुप्ता और सब उधर दादी जी के कमरे में बैठे हुए थे। हमको फोन आया कि दादी जी की तबीयत बहुत सीरियस है। तो हम सब दौड़ते दौड़ते वहाँ गए और हमने दादी जी को शरीर छोड़ते हुए देखा। दादी जी के साथ में बाजू में एक मशीन था जिसके ऊपर हवा ऐसे ऐसे मार्किंग होता था, तो श्वास जितना लेते हैं इतना श्वास छोड़ते हैं करते हैं, तो इस प्रकार से ऊपर नीचे होता था। जब दादी जी ने शरीर छोड़ा तो वो मशीन जो है ना उसके अंदर जो रेखा जो थी, लाइन जो थी, वो सीधी हो गई। सतीश गुप्ता ने हमको कहा कि देखो दादी जी ने शरीर छोड़ा है, आत्मा शरीर का निकल करके बाबा के पास गई है, मशीन जो है वो दिखाता है कि अभी शरीर नहीं, मैं आत्मा नहीं है। इस प्रकार से दादी जी का अंतिम समय का जो दृश्य है वो भी हम सब ने देखा। दादी जी के कैसे दादी जी अव्यक्त हो गए और अव्यक्त हो करके कैसे पाठ बजा रहे हैं वो तो आप जानते हैं। कल भी दादी जी अपने पास आएंगे तो देखो क्या हो सकते हैं दादी जी के द्वारा कई बातें। पिछले साल तो दादी जी 15-20 मिनट दादी जी ने मुरली भी चलाई थी। इस प्रकार से होगा कि कल का क्या बात है कुछ मालूम नहीं है। आप देखो इतने भाई बहन बैठे हुए हैं और इतने सब 15-20 हज़ार भाई बहन आ गए हैं। इस प्रकार से दादी जी की पुण्यतिथि के निमित्त हम सब यहाँ आए हुए हैं। ऐसे तो ब्रह्मा बाबा की पुण्यतिथि होती है 18 जनवरी, उस दिन तो मुरली ऑफिशियल होती है, इसलिए हम सब आते हैं। अभी 2 दिन पहले कल रविवार के दिन भी 18 जनवरी 1980 की अव्यक्त मुरली थी। इस प्रकार से यहाँ पर बाबा के पास मुरली की 18 जनवरी की तो मुरली होती ही है, इसके लिए उस टाइम तो सब आते ही हैं। तो दादी प्रकाशमणि के अव्यक्त होने की पुण्यतिथि के ऊपर इतने भाई बहन आप सब आए हुए हैं, यही बताता है कि आप सबके दिल में दादी प्रकाशमणि के लिए कितना प्यार है, कितना स्नेह है। और इस प्यार और स्नेह के कारण साथ साथ यहाँ आधार कुमारों की युगलों की भट्टी है, इसके कारण इतनी बहनें इतने भाई आए हुए हैं। तो ये भी कोइंसिडेंस है कि आप सब यहाँ पर है और कल यहाँ पर स्टेज पर क्या होगा वो तो आप सब हम सब देखेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, कितना होगा कारोबार, कैसे होगा, और इस प्रकार से देखते हैं क्या होगा। और बाबा ने एडवांस पार्टी का भी रोल जो है कल 18 जनवरी की स्टेज की मुरली में बताया। इस प्रकार से एडवांस पार्टी का रोल जो है वो भी आस्ते आस्ते खुलता जाएगा। दीदी मनमोहिनी भी एडवांस पार्टी में गई, दादा विश्व किशोर भी गए, ऐसे बहुत से गए हमारे बॉम्बे की दादी ब्रिजेंद्र, दादी शैलेंद्र, दादी पुष्प शांता, ऐसे ऐसे ऑलराउंडर दादी दिल्ली में, इस प्रकार से बहुत से हमारे एडवांस पार्टी दादी जानकी ने करीब 29-30 एडवांस पार्टी में गए हुए महारथियों का फोटो रखा हुआ है। ये हमारे पूर्वज हैं, वैसे हमारे पूर्वज जो होते हैं उनकी पुण्यतिथि के रूप में मैं समझता हूँ कल हम सब जितने भी पूर्वज हैं इन सब की याद में हम सब बैठेंगे और सब मिल करके दादी प्रकाशमणि का आह्वान करेंगे, बाबा उनको भेजेंगे तो देखें उनके द्वारा कारोबार कितना आगे बढ़ा हुआ है। स्थूल रूप में तो जो कारोबार हुआ वो तो मैंने साक्षी होकर के आपको बताया, तो सूक्ष्म रूप में क्या होगा वो तो हम जानते हैं, देखते रहते हैं कैसे सूक्ष्म रूप में बाबा का कारोबार इसके द्वारा हो रहा है। तो ये भी हम देखेंगे दादी के द्वारा सूक्ष्म रूप में क्या कारोबार होता है, एडवांस पार्टी के रूप में क्या कारोबार होता है, वो सब देखना पड़ेगा। देखते रहेंगे, कारोबार होता रहेगा और यज्ञ तो है, चलता रहेगा। हाँ, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए तो भी यज्ञ चलता रहा, दादी प्रकाशमणि अव्यक्त हो गई, दीदी मनमोहिनी आदि आदि सब दादियाँ कितनी, एक जमाने में बॉम्बे में 7-8 दादियाँ थी, आज बॉम्बे में एक भी दादी नहीं है। तो इस प्रकार से कारोबार के अंदर हम चलता रहता है। हम लोग सब आस्ते आस्ते दादियों के द्वारा जो ट्रेनिंग मिली हुई है उसके आधार पर हम यज्ञ को आगे बढ़ाते रहते हैं और साथ साथ हम भी बढ़ते हैं, हम भी बढ़ते हैं, यज्ञ भी बढ़ता है, ईश्वरीय सेवा भी बढ़ती है। अब आगे और भी कई अनेक प्रकार की बातें आने वाली है, ऐसा नहीं है कि इतनी जो भी सेवा हुई इतनी नहीं है, उसके अलावा अनेक प्रकार की नई नई सेवाएं आने वाली हैं और नई नई सेवाएं जो भी आएंगी दादियाँ जो है ऊपर में सूक्ष्म रूप में मददगार बनेंगे। ब्रह्मा बाबा और दादा बाबा शिव बाबा हमको प्रेरणाओं के रूप में, संदेशों के रूप में गुजरा दादी आदि के द्वारा जो संदेश मिलता रहेगा उसके द्वारा कारोबार आगे चलाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर निर्वेर जी बॉम्बे में थे, उनका बाईपास सर्जरी हुआ था और वहाँ पर कुबा वासवानी कुबा जो है वो दादाजी दादा कुबा गए थे और उसके निमित्त के कारण ग्लोबल हॉस्पिटल का निर्माण हुआ। ऐसे बहुत से कारोबार हुआ दादी जी की अध्यक्षता में। यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू जो है उस जमाने में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, वो यहाँ आए हुए थे तो वो ऊपर से नीचे आ रहे थे, कार में निर्वेर भाई के साथ बैठे थे। उन्होंने कहा कि आप हमारा हैदराबाद में करो, रिट्रीट सेंटर बनाओ। निर्वेर भाई ने कहा कि हम बना सकते हैं, आप जमीन दे दो। तो फिर नीचू में आए और यहाँ बाबा का मुरली सुनी। उन्होंने कहा कि उसके बाद रात का भोजन के टाइम पर हमको निर्वेर भाई और हमको कहा कि आप हमारे पास आओ, हम आपको जमीन दे देंगे। निर्वेर भाई ने हमको कहा कि और दादी जी ने छुट्टी दिया तो इसके कारण हम लोग कल हैदराबाद गए, वहाँ शांति सरोवर की स्थापना हुई। इस प्रकार से दादी जी की अध्यक्षता में अनेक प्रकार के सेवा के नए नए फील्ड जो है वो निकलते रहे, बनते रहे। मैंने आपको बताया ना कि विहंग माँ की सेवा के लिए दादी जी को ही ब्रह्मा बाबा ने बॉम्बे भेज दिया था और दादी जी के अध्यक्षता में ही विपर्श प्रदर्शनी जैसे विदेश में विहंग माँ की सेवा की शुरुआत की। चार पिछले हफ्ते में ही ब्रह्मा बाबा ने साकार बोले में मेरा नाम कहा कि बच्चे ने अच्छा किया, प्रदर्शनी रूपी हीरा डायमंड बना दिया है। वास्तव में मेरी खोज नहीं है, दादी प्रकाशमणि वहाँ थे और उनको बॉम्बे में बाबा ने भेज दिया और उसके कारण चित्र बनते रहे और दादी जी ने अच्छे से चित्रों बनाने के लिए सहयोग दिया, मददगार बने। तो दादी जी गुप्त रूप में दादी जी ही निमित्त थे। मेरा नाम आदि जादि जो भी है वो अलग है, परंतु वास्तव में मेरे हिसाब से दादी जी ने ही विहंग माँ की सेवा के लिए जैसे पहली रिकॉर्ड बनाई वहाँ स्टूडियो में हम गए तो सारा दिन दादी जी हमारे साथ में बैठे और सारा दिन साथ में बैठ करके दादी जी ने एक एक गीत की तर्ज कैसे होती है, उसके रिदम क्या होनी चाहिए, उसका म्यूजिक कैसे होना चाहिए, वो सारा देखा और मददगार बने। और इस प्रकार से दादी जी ने गीत के बारे में भी कारोबार किया। मेरे घर में ही पहला रिकॉर्ड हुआ गीत, उस दिन भी रात को दादी जी ही हमारे घर में ही रहे और ललित सोडा ने हमारे घर में गाया वसुधा के इस आंचल में शिव स्वागत आज तुम्हारा। वो भी हमारे घर में ही थे और दादी जी भी हमारे घर में ही रात को रह गए और उस दादी जी की अध्यक्षता में पहला गीत भी बाबा की सेवा में बन गया। इस प्रकार से दादी जी की मदद के आधार पर और उनकी प्रेरणा के शक्ति के आधार पर, विचार शक्ति के आधार पर, जो भी आप कहो, इस प्रकार से यज्ञ का इतिहास जो है दादी जी खुद भी आगे बढ़ते रहे और सारे यज्ञ को हम सबको भी आगे बढ़ाते रहे। और भी अभी आगे सूक्ष्म रूप में क्या क्या होगा वो हम सब साक्षी बन करके देखेंगे। बातें तो बहुत है, बहुत से इंसिडेंसेस आपको बता सकते हैं, परंतु 7 बजे पूरा करने का है। दादी जानकी भी शायद आ रही है, 7 से 7:30 यहाँ योग कराएंगे और 7:30 के बाद दादी जी खुद क्लास भी कराएंगे। आज ही लंदन से आए हुए 4:15 बजे, कल रात को बॉम्बे पहुंच गए थे, बॉम्बे से रात को अहमदाबाद आए, आज दोपहर में 1 बजे भोजन करके निकले, 4 बजे तक यहाँ आ गए हैं। तो अभी मतलब दादी जी भी 7 बजे आएंगे और इस प्रकार से हम सबके साथ दादी जी जानकी के साथ दादी जी का विदेश यात्रा का समाचार भी सुनेंगे, कैसे दादी जी ने विदेश में सेवा किया। दादी जी लंदन भी गए, मोरक्को गए और भी कई जगह पर जाकर के सेवा किया हुआ है, वो सब समाचार हम सुनेंगे, दादी जानकी के मुख से ही चेतन रूप में दादी जानकी के मुख से सुनेंगे। हमने तो जो आपको दादी प्रकाशमणि का सुनाया वो तो साक्षी बन करके हमारा जो अनुभव था वो ही सुनाया। ऐसा सभी हमारे जो भी निर्वेर भाई है, ब्रिजमोहन भाई है, इन सब के पास भी दादी प्रकाशमणि के अनुभवों का खजाना बहुत बड़ा है, परंतु मुझे आपके मनोरमा कर ने कहा कि आपको सुनाना है इसे। मैंने कहा ठीक है, जैसे आपको हो, इसलिए मैं तो निमित्त हूँ, तो बाकी औरों के भी आपको अनुभव सुनना चाहिए। इसके कारण क्या हो जाएगा, यज्ञ का इतिहास की वास्तविकता आप हम सबको मिलेंगी। तो इसी प्रकार से देखिए आगे चलकर क्या होगा, कल ही क्या होगा उसको भी हम देख लेंगे। तो इस प्रकार से हम भी हम समाप्त करते हैं। बराबर 7 बजे हुए हैं यहाँ पर। ओम शांति। एक मिनट बाबा की याद में बैठेंगे और उसके बाद समाप्त करेंगे और उसके बाद योग का कारोबार शुरू हो जाएगा। ओम शांति।